आज हम भगवद गीता के 16वां अध्याय के 21st श्लोक से चर्चा करेंगे। आप सब मेरे पीछे बोलेंगे, त्रिविधं नरकस्येदाम् द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभास् तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। There are three gates leading to this hell: lust, anger, and greed. Every sane man should give these up, for they lead to the degradation of the soul. Purport and translation by A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. The beginning of demoniac life is described herein. One tries to satisfy his lust, and when he cannot, anger and greed arise. A sane man who does not want to glide down to the species of demoniac life must try to give up these three enemies, which can kill the self to such an extent that there will be no possibility of liberation from this material entanglement. बहुत ही सुंदर श्लोक है। यहाँ पे भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि नरक जाने के तीन द्वार है। एक तो है काम, एक है क्रोध और एक है लोभ। जब काम उत्पन्न होता है और काम की पूर्ति होती है तो लोभ बढ़ जाता है, क्योंकि आपको कुछ मिला, अब आपको और चाहिए। जब काम की पूर्ति नहीं होती है तो आपको क्रोध हो जाता है, क्योंकि आपको नहीं मिला। लेकिन ये काम या क्रोध या ये जो लोभ है, ये तीन हमें नरक की ओर ले जाते हैं। आज हम विशेषतर क्रोध के ऊपर बात करेंगे, फिर कभी और काम पे भी बात करेंगे, फिर कभी और लोभ पे भी बात करेंगे, क्योंकि ये तीन चीज साधारण सब में देखी जाती है और ये हमें नरक की ओर ले जाती है। हमें इस पे काम करना है। हम देखते हैं वैष्णव आचार्य के भजनों में, वैष्णव आचार्य बोलते हैं कि हमारे जैसा दीन कोई नहीं है, हमारे जैसा पापी कोई नहीं है, हमारे जैसा पतित कोई नहीं है। तो कभी कभी हमें विचार आता है कि वैष्णव आचार्य वो लोग तो इतने एलिवेटेड है, शुद्ध भक्त है, फिर भी वो अपने आप को पापी क्यों कहते हैं, वो अपने आप को पतित क्यों कहते हैं, क्या वो लोग भी सुंदर वोकैबुलरी यूज करने के लिए वो वर्ड्स यूज करते हैं, या शायद वो अच्छा से राइमिंग हो रहा हो इसीलिए यूज कर रहे हैं, एग्जैगरेशन कर रहे, क्या है इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि हमें तो पता है कि ये जो वैष्णव आचार्य है वे तो बहुत प्योर डिवोटीज है, पाप का तो लेश भी उनमें नहीं है, फिर भी वो अपने आप को पतित क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनका स्टैंडर्ड ऑफ पाप अलग है। हमारे लिए पाप करना मतलब चार नियमों का पालन नहीं करना, मांसाहार करना या झूठ बोलना या अभद्र स्त्री संग करना, ये सब हम पाप सोचते हैं। लेकिन ये इतने प्योर है कि उनके लिए पाप की परिभाषा ही कुछ और है। वो सोचते हैं पाप मतलब अगर एक सेकंड के लिए भी अगर हम भगवान को भूल गए मतलब पाप। जिन्होंने ये पूरी सृष्टि की है, जो ये पूरी सृष्टि के अधिपति है, जो हमारे सर्वस्व है, ऐसे श्री भगवान को अगर हम एक सेकंड के लिए भी भूल जाते हैं, और भूलने के बाद जो हम एक श्वास भी लेते हैं, वो पाप है, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड इतना हाई है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि वो हमें इम्प्रेस करने के लिए बोल रहे हैं कि मौसम पति तो कोई नहीं है, वो एक्चुअली सोचते हैं ऐसा और मन में दुख करते हैं कि हम कैसे भूल गए भगवान को। उसका मतलब हमारे सामने बहुत हाई स्टैंडर्ड दिया हुआ है वैष्णव आचार्यों ने, कि हम भी अगर भक्ति का उद्गम स्थान अल्टीमेट अगर हम अचीव करना चाहते हैं, मतलब हमारे जीवन में भी ऐसी स्थिति आनी चाहिए जहां पे हम एक क्षण के लिए भी भगवान को ना भूले, माने सततम कीर्तयंतो माम करे, कंटिन्यूस भगवान का स्मरण करे। अब कैसे करे कंटिन्यूस भगवान का स्मरण? तो उसका भी चैतन्य महाप्रभु ने बोल दिया शिक्षाष्टकम में कि अगर आपको करना है तो आप में कुछ क्वालिटीज आपको डेवलप करनी पड़ेगी, जैसे कि त्रिनादपि सुनिचे ना तरोरपि सही सुना, अमानी ना मान देना कीर्तन्य सदाहरि। चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि आपको कीर्तन्य सदाहरि करना है तो आप में ये क्वालिटीज आनी है, त्रिनादपि सुनिचे ना तरोरपि सही सुना, अपने आप को रास्ते के घास से भी निम्न मानना, जैसे वृक्ष में टॉलरेंस होती है सहन शक्ति, उतनी सहन शक्ति होना, अमानी ना मान देना, दूसरों से रेस्पेक्ट एक्सपेक्ट नहीं करना और सबको रेस्पेक्ट देना। जो ऐसे भाव में है वो ही भगवान का नाम सतत ले सकते हैं। अगर आप में ये क्वालिटीज नहीं है तो आप भगवान का नाम सतत नहीं ले पाओगे, क्योंकि कितनी सारी प्रॉब्लम्स है आपके लाइफ में, आपको इससे झगड़ा है, इससे ईर्ष्या है, इस पे गुस्सा है, इससे ये है, ऐसे सिचुएशन में कैसे लोगे भगवान का नाम। जिस दिन आपके पास कोई एक्सपेक्टेशन है ही नहीं कि मुझे कोई मान दे, आपके पास कोई एक्सपेक्टेशन है ही नहीं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अगर आपका माइंड क्लियर है तभी आप कंटिन्यूसली भगवान का नाम ले सकते हो। उसका मतलब हम में जो ये अनर्थ है उसे हमें बाहर निकाल के फेंकना है। मैं बहुत बार ये एग्जाम्पल देती हूँ कि जब मछुआरे मछलियों को नेट में पकड़ते हैं बेचने के लिए तो बस वो नेट डालते हैं, मछलियों को पकड़ते हैं, बेच देते हैं, लेकिन जब अपने खाने के लिए वो मछलियों को पकड़ेंगे तो एक एक मछली को नेट में से निकाल के देखेंगे, ये अच्छी है कैसी है, इसको लू ना लू। उसी तरह से जब हम साधना करते हैं, जप करते हैं, सोला माला करते हैं, सब फॉलो करते हैं, हम भगवान के नेट में तो आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद भगवान देखते हैं इसमें काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, तो फिर नीचे फेंक देते हैं। तो हम ये जो साधना का प्रोसेस कर रहे हैं उससे शायद गोलोक वृंदावन के द्वार तक चले जाए, लेकिन बाद में द्वारपाल बोलेगा कि इसमें तो काम क्रोध की गंध आ रही है, इसको निकालो बाहर। उसका मतलब जब तक हम अनर्थ पे वर्क नहीं करेंगे तब तक हम नहीं जा सकते भगवान के धाम। तो सबसे बड़ा तीन अनर्थ क्या है, काम क्रोध और लोभ या मोह। ये लोभ पे हमें काम करना है। अब ये जो क्रोध है ये क्या है, ये क्यों आता है, कहाँ से उत्पन्न होता है, कितने प्रकार के क्रोध है, इस पर हमें स्टडी करना है, इस पर हमें वर्क करना है। जब हम भक्ति जीवन में आते हैं तब ट्रांसफॉर्मेशन आउटसाइड इनसाइड नहीं होना है, इनसाइड आउटसाइड होना है। भक्ति जीवन में जब आते हैं बाहर आउटसाइड ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत जल्दी हो जाता है। पहले पैंट शर्ट पहनते थे, अब धोती कुर्ता पहनते हैं। हाँ, पहले हम तिलक नहीं लगाते थे, अब लगाते हैं। पहले शायद कोई कीचेन स्टाइलिश सी हाथ में पकड़ लेते थे, अब शायद जपमाला पकड़ लेते हैं। आउटसाइड तो बहुत बदल गए, इनसाइड, इनसाइड बदलना है। एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा होना चाहिए, पहले इनसाइड होता है, फिर इनसाइड इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है कि वो बाहर झलकने लगता है। जैसे कभी कोई पॉट होता है, अगर आप उसमें पानी भरो, अगर पॉट में पूरा पूरा पानी भर जाता है तो फिर क्या होता है, पानी बाहर में निकल जाता है। जब इनसाइड में इतना ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है कि फिर हमारी बाहरी आदतें, व्यवहार, सब कुछ बदल जाता है। लेकिन हमारे किस्से में हमेशा उल्टा हो रहा है। बाहर में तो बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आ जा रहे हैं, बाहर में हम देखने में एकदम प्योर डिवोटी लगता है, लेकिन अंदर में अभी भी वही दुर्गंध, कोई चेंज नहीं, अभी भी वही काम, वही क्रोध, अभी भी हम टच मी नॉट जैसे है, बस मुझे छुओ और मैं दिखाती हूं मेरा गुस्सा, मुझे बस आप टच करो गलत जगह पे मैं अपना रूप बताती हूं। फिर क्या फायदा हुआ, हम जो इतना सत्संग सुनते हैं, इतना भगवान की स्तुति करते हैं, आरती अटेंड करते हैं, जब करते हैं, लेकिन नो ट्रांसफॉर्मेशन, फिर क्या फायदा हुआ। हमें अंदर में काम करना है, इस क्रोध पे हमें काम करना है। कुछ बोलते हैं क्या काम करना है क्रोध पे, जप करो, भगवान को प्रार्थना करो, अपने आप से क्रोध कम हो जाएगा। हर चीज तो भगवान को डेलीगेट नहीं कर सकते ना, कुछ चीज हमें भी करनी पड़ेगी। आशीर्वाद से गुस्सा कम नहीं होता, भगवान आशीर्वाद देंगे तो मेरा गुस्सा कम हो जाएगा, गुस्सा कम के लिए आपको काम करना पड़ेगा। जिस तरह से नेचर्स कॉल आप किसी को डेलीगेट नहीं कर सकते हैं कि मुझे बाथरूम जाना है, जरा मेरी तरफ से बाथरूम जाके आ जाओ, ऐसे नहीं हो सकता, बाथरूम तो आपको ही जाना पड़ेगा। गुस्से पे काम तो आपको ही करना पड़ेगा, कोई और आपके आशीर्वाद से गुस्सा कम नहीं होता। उसका मतलब हमें इस पे वर्क करना है, ये गुस्सा कहाँ से आता है, ये गुस्सा क्यों आता है, इसके मूल कारण क्या है। और हमारे पास समय भी बहुत कम है। ये ह्यूमन लाइफ कैसा है, जिस तरह से अगर आप फ्रिज खोलो, बर्फ की ट्रे से एक दो बर्फ निकालो, बाहर किचन के प्लेटफॉर्म में रख दो, क्या होगा, क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। क्या उसे रोक सकते हो, नहीं रोक सकते। उस तरह से हमारी लाइफ भी टिक होते जा रही है, धीरे 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 मेल्टिंग होते जा रही है। हमें जल्दी करना है, इस अनर्थों पे हमें काम करना है. अब क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसका एक प्रोसेस है. इस गुस्से से हमें कैसे बाहर आना है, सबसे पहले तो हमें एक दृढ़ निश्चय लेना है कि हम अपने आप में बदलाव चाहते हैं. कभी कभी हम अपने आप से इतने सेटिस्फाइड हैं, हम अपने आप में कोई बदलाव चाहते ही नहीं. आप में से यहाँ कितने लोग हैं जो सोचते हैं कि हाँ माता जी मेरे स्वभाव में कुछ बदलाव आना चाहिए. यहाँ पे कितने लोग ऐसे सोचते हैं कि मेरे आसपास के लोगों के स्वभाव में बदलाव आना चाहिए तभी मैं खुश रह सकता हूं. हम में आना चाहिए बदलाव. हालांकि हमारा एक्चुअल नेचर ये है कि हमारे आसपास के लोग थोड़ा सा बदल जाए तो सब ठीक हो जाए, लेकिन एक्चुअली बदलना किसे है, हमें बदलना है. हमारे स्वभाव को हमें बदलना है. अब आप बोल सकते हो माता जी स्वभाव तो कभी नहीं बदलता, आत्मा का जो स्वभाव होता है वो तो बदल नहीं सकता, वो तो शाश्वत है. लेकिन क्रोध कोई स्वभाव नहीं है, क्रोध आदत है. क्रोध स्वभाव नहीं है, क्रोध आदत है. आपको आदत हो गई है क्रोध करने की, आपको आदत हो गई है और फिर आप बोलते पता नहीं कहाँ से आ गया क्रोध, मैं करना नहीं चाह रहा था लेकिन क्रोध आ गया. अब क्रोध कोई पॉटी तो नहीं है कि आ गई माता जी मैं क्या करूं, वो आती नहीं है, आप लेके आते हो उसको, है ना. अब इस क्रोध पे हमें वर्क करना है. अब कुछ लोग सोचते हैं कि जब क्रोध आता है अगर हम क्रोध कर ले तो बात खत्म हो जाती है, लेकिन क्रोध कर लेने से बात खत्म नहीं होती है. सी जिस तरह से जब हमको बाथरूम लगती है, हम बाथरूम जाते हैं तो बाथरूम करने के बाद क्या हो जाता है, हम रिलैक्स हो जाते हैं. जिस उसी तरह से जब हमें क्रोध आता है और हम क्रोध कर लेते हैं, क्या उसके बाद में हम रिलैक्स हो जाते हैं, नहीं रिलैक्स हो जाते. उसका मतलब वो करने वाली चीज नहीं है. अगर क्रोध करने से रिलैक्स हो जाते फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन क्रोध करने के बाद भी हमें शांति नहीं मिलती है. हम सफर होते हैं ना, मेंटली बहुत ज्यादा सफर होते हैं. उसका मतलब इसका सोल्यूशन कुछ और है. इसको सिर्फ क्रोध बाहर निकालने से ये बात खत्म होने वाली नहीं है. अब आज के इस प्रवचन में हम दो चीज पे वर्क करेंगे. एक है कि क्रोध आता कहाँ से है, और क्रोध जब आता है तो हमें क्या करना चाहिए, और क्रोध कभी ना आए उसके लिए हमें क्या करना चाहिए. इस दो चीज पे हम वर्क करेंगे. तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये करना है कि पहले तो दृढ़ निश्चय बनाए कि हाँ मुझे अपने आप में चेंज चाहिए, मुझे क्रोध नहीं करना है. उसके लिए हम सुनेंगे, अटेंटिव लिसनिंग करेंगे, उसके बाद में विशफुल थिंकिंग करेंगे. विशफुल थिंकिंग करना मतलब एक आशा करना कि हाँ मैं क्रोध कम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ये पॉसिबल है. और उसके बाद में एक गोल बनाएंगे, और वो गोल कैसा होना चाहिए, टाइम के साथ में टाइम ओरिएंटेड होना चाहिए कि हाँ बाय दिस टाइम मैं मेरे क्रोध को कम करूंगा. हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम हमेशा अंडर कंस्ट्रक्शन का बोर्ड लगा के बैठे हुए हैं. जैसे बिल्डिंग बनती है ना तो वहां पे बोर्ड लगाते हैं इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन, वैसे हमारा भी सब समय अंडर कंस्ट्रक्शन बोर्ड लगा हुआ है. हम हमेशा जाके लोगों से क्लैरिफाई करते रहते हैं एक्चुअली आई डोंट मीन दिस बट ऐसा हो गया. अब कितना साल जीवन में आप ऐसे बोलते रहेंगे आई डोंट मीन दिस बट ऐसा हो गया. वाई कांट यू कंट्रोल योर इमोशन, क्यों ऐसा हर बार आपको लोगों के पास जाके क्लैरिफाई करना पड़ता है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता था लेकिन ऐसा हो गया. कितना दिन, उसका मतलब समवेयर वी हैव टू स्टॉप एंड वी हैव टू बी माइंडफुल. क्रोध इसीलिए आता है क्योंकि हम माइंडफुल नहीं है. माइंडफुल होना मतलब अलर्ट होना, समझना कि हाँ मुझे क्रोध आ रहा है. लेकिन हमारा प्रॉब्लम यह है जिस तरह से ड्रंकर्ड होते हैं ना, अगर आप उनको बोलो कि आपने शराब बहुत ज्यादा पी के रखी है, वो बोलेंगे नहीं तो ठीक हूं. उसी तरह से जो क्रोध करते हैं वो सोचते नहीं तो मेरे को ऐसा कोई क्रोध का प्रॉब्लम नहीं, वो तो इनके वजह से मुझे क्रोध आ जाता है, ये प्रॉब्लम है बस, अदरवाइज मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सबसे पहले तो हमें ये करना है कि हमें एक्सेप्ट करना है कि हाँ मुझे क्रोध आता है, ये मुझ में प्रॉब्लम है और मैं इसको ठीक करना चाहता हूं. तो ये फर्स्ट स्टेप है कि बीइंग माइंडफुल. आप एक्सेप्ट करो कि आपको क्रोध आता है. क्रोध को ठीक करने की बस दो चीजें, माइंडफुल एंड स्किलफुल. आप जो बोलते हो करते हो आप स्किलफुल रहो वचनों से, एंड माइंडफुल रहो आपके मन से। ये दो चीज अगर आप करेंगे तो आप क्रोध को नियंत्रण कर सकते हो। अब क्रोध जब होता है तब हम में एक पीड़ा सी होती है। कोई भी ऐसा नहीं है जो बोल सकता है कि मुझे क्रोध आता है तो अच्छा लगता है। क्रोध होने से पीड़ा होती है, उसका मतलब जब क्रोध होता है आप अंदर में सफर करते हो, है ना, यू फील पेन इनसाइड। अब जब आपको पेन होता है सबसे पहले आपको क्या करना है, द फर्स्ट स्टेप, जैसे अभी क्रोध आ गया उसका मतलब आप सफर कर रहे हो, तो सबसे पहले क्या करना है, आपकी सफरिंग को बंद करना है। लेकिन हम नहीं करते, हम उसके विपरीत करते हैं। सी सपोज अगर आपके घर में आग लग गई, दीपक प्रभु घर में आग लग गई तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? हाँ, ऐसा तो कोई नहीं है ना यहाँ पे जो घर में आग लग गई तो सबसे पहले नेबर्स के पास जाएंगे, आपको पता है मेरे घर में आग लग गई, कभी नहीं लगी थी, पहली बार मेरे घर में आग लगी, ऐसा आप बोलते हैं क्या? नहीं जाते, कोई नहीं जाता नेबर के पास। अच्छा, ऐसा कोई है क्या घर में आग लगी तो बोलते हे भगवान घर में आग लगी? कोई प्रार्थना करता है? कोई प्रार्थना नहीं करता है, नेबर्स को जाके नहीं बताता है। अच्छा, ऐसा कोई है कि भाई शांत रहो अपने आप से आग ठीक हो जाएगी? नहीं, ना शांत रहते हैं, ना प्रे करते हैं, ना नेबर्स को बताते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, पानी डालते हैं। सबसे पहले पानी डालना है, उसका मतलब क्रोध आने से सबसे पहले पानी डालना है। कोई ऐसा है कि जब घर में आग लग जाए तो बैठ के एनालाइज करेगा कि भैया आग लगी कैसे? पहले पानी डालो, उसके बाद आपको जो करना है करो। उसका मतलब जब क्रोध आता है सबसे पहले हमें क्या करना है, क्रोध को शांत, उस मोमेंट हमें उसको पहले शांत करना है, उसके बाद ये सारे स्टेप्स शुरू करना है, एनालाइज करना क्यों आया, कहां से आया, कैसे आया, लेकिन सबसे पहले उसको शांत करना है। लेकिन हम क्या करते हैं गलती, जब क्रोध आता है तब हम सबसे पहले क्या कर देते हैं, दूसरों को उसके बारे में बताते हैं, उसको एनालाइज करने बैठ जाते हैं, उसका कारण क्या है, क्यों आया, कितनी सारी चीजें है ना। जब क्रोध आता है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आपको पता है इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसको फोन लगाओ, उसको फोन लगाओ, उस इंसिडेंट को बार 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 सबको बताओ, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, क्या उससे कोई फायदा होगा? नहीं होगा। कुछ लोग बोलते नहीं नहीं उसके बारे में चुप रह जाओ, सहन कर लो। तब क्या हो जाता है, जब आप सहन कर लेते हो तब वो आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड में जाने के बाद वहां से बदबू आती है। देखो अगर आपके घर में कोई चूहा मर गया, ओके, तो क्या करेंगे आप, चूहा मर गया तो चूहे को घर से बाहर फेंक देंगे। लेकिन ऐसा तो कोई नहीं करता ना कि भाई घर में हॉल में चूहा मर गया है, स्मेल आ रही है तो बेडरूम में रख दो, अच्छा बेडरूम में स्मेल आ रही है तो पलंग के नीचे रख दो, अच्छा पलंग के नीचे आ रही है तो स्टोर रूम में रख दो, फायदा नहीं है, जहां भी रखोगे वहां से स्मेल तो आएगी, उसको आप पूरा पूरा निकाल के बाहर फेंकना है। लेकिन हमें जब क्रोध आता है हम पूरा पूरा उसको निकाल के बाहर नहीं फेंकते, हम उसको गोडाउन में रख देते हैं, या तो उसके बारे में सोचते रहते हैं, या तो सोचते हैं कि पीछे रख दो इसके बारे में फिर से मैं एनालाइज करूंगा, उसको हम टाइम नहीं देते, फिर दूसरे काम में लग जाते हैं, तीसरे काम में लग जाते हैं, और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पकता रहता है और थोड़े दिन के बाद उसमें से बास आ जाती है। उसका मतलब जब क्रोध आता है तो क्या करना है, उसको ऐसा नहीं है कि सहन करके भूल जाना है, उस पर बैठना तो है, बट एट दैट मोमेंट पहले उसको शांत करना है। जिस तरह से अगर कोई छोटा सा बच्चा रोता हुआ आपके पास आता है, रो रहा है, लग गया उसको, कुछ भी हुआ, सबसे पहले आप क्या बोलोगे, क्या हुआ, सबसे पहले बोलोगे पहले तुम रोना बंद करो, पानी पियो, रोते रोते बोलोगे तो मुझे समझ में भी नहीं आएगा तुम क्या बोल रहे हो, किसने मारा, करेक्ट। सबसे पहले बच्चे को शांत करते हैं, पानी पिलाते हैं, उसके बाद में पूछते हैं अब बताओ किसने मारा, क्या हुआ तुमको। उसी तरह से पहले हम क्रोध को शांत करेंगे, उसके बाद में उस पर एनालाइजिंग शुरू करेंगे। तो क्रोध को शांत करें कैसे, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट इस प्रभु जी ने कुछ बोल दिया, मुझे अब बहुत ही गुस्सा आ रहा है उनके ऊपर में, अब मुझे इमीडिएटली क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस ब्रीथिंग करनी है, कंटिन्यूस ब्रीथिंग करनी है, कंटिन्यूसली अपने ब्रीथिंग को ऑब्जर्व करना है और अलर्ट होना है और समझना है कि यस मुझे गुस्सा आ रहा है। इसका कोई मैं आपको क्या बोलने, आप एक्सपेक्ट करेंगे कि इस्कॉन के क्लास में गुस्से कंट्रोल के बारे में माताजी जरूर बोलेगी, हरे कृष्ण करने लगो, चैंटिंग करने लगो, भगवान को प्रे, नहीं वो सब नहीं, क्योंकि उस टाइम पे आप जो भी करोगे, इवन उस टाइम पे अगर आप प्रे भी करोगे ना भगवान को, तो आपकी प्रेयर भी सारी गलत ही होगी। अगर आपका पति पत्नी का झगड़ा हो गया उस टाइम पे अगर आप भगवान को प्रे करोगे तो आप क्या बोलेंगे, माय डियर लॉर्ड प्लीज चेंज माय वाइफ नेचर, वाइफ नहीं बोला मैंने, मुझे गलत मतलब निकालते, प्लीज चेंज माई वाइफ नेचर. उस टाइम पे आप ऐसे नहीं बोलोगे कि चेंज माई नेचर, आप बोलोगे चेंज माई वाइफ. आपका पूरा तरीका ही सोचने का गलत होगा. उसका मतलब उस टाइम पे आपको प्रे करना नहीं चाहिए. गुस्से में आप प्रे करोगे तो काम नहीं होगा. अगर गुस्से में एनालाइज करोगे तो भी गलत ही एनालाइज करोगे. इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको वैसा नहीं करना, बिकॉज एट दिस मोमेंट यू आर इन एंगर. आप कुछ भी करोगे वो गलत ही होगा. इसलिए सबसे पहले तो गुस्सा को ठंडा करना है. यू जस्ट हैव टू ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट बस. और समझो कि हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है. समझो कि यस आई एम गेटिंग एंग्री. इफ यू बिकम अलर्ट, आपको गुस्सा आएगा ही नहीं. इस बार जब आपको गुस्सा आया, आप एक बार ये करके देखो कि जब तक गुस्सा शांत नहीं होगा मैं ब्रीथिंग बंद नहीं करूंगा. कंटिन्यूसली ब्रीथिंग एंड ब्रीथ आउट. आप अपने आप को ये एक्सरसाइज दे दो कि जब तक मैं ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करूंगा, जब तक कि मेरा गुस्सा कूल डाउन नहीं होता है. दैट इज द फर्स्ट स्टेप. पहले आप गुस्सा को ठंडा करो, उसके बाद में इंट्रोस्पेक्शन करो, एनालाइज करो क्यों हुआ था, क्या हुआ था. और जो गुस्से के कारण है उसे पोस्टपोन मत करो. जब लेट करते हो तो वो चीज़ ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ में बढ़ जाती है. उसको तभी का तभी सॉर्ट आउट करना है आफ्टर यू कूल डाउन. द मोमेंट आप कूल डाउन हो जाते हो, आपके आपको चीज़ें क्लियरली दिखाई पड़ती है. जब आप लाल चश्मा पहनते हो आपको सब कुछ लाल दिखाई देगा, जब ब्लू चश्मा पहनोगे सब कुछ ब्लू. गुस्सों में रहोगे सब कुछ आपको गलत ही लगेगा, आपको लगेगा पूरी दुनिया गलत है, बस मैं अकेली सही हूँ. लेकिन जब आप शांत हो जाओगे उसके बाद में, जब आप उसको न्यूट्रली देखोगे, तब लगेगा कि नहीं नहीं मेरी भी गलती थी, इसकी भी गलती थी, ये हमारे साथ में हुआ है. तो ये गुस्से को कंट्रोल करने के लिए थोड़े स्टेप्स है. माइंडफुल ब्रीथिंग करिए, एनालाइज करिए. गुस्सा आपका अपना है, वो कहीं और से तो सृष्टि नहीं हुआ है. उसका मतलब उस गुस्से को केयर की जरूरत है. पहले तो एक्सेप्ट करो कि हाँ आप मेरी सृष्टि हो, आप मुझसे आए हो, अब मुझे आपका टेक केयर करना है. अब गुस्से के भी अलग अलग टाइप्स है, जिस तरह से हम गुस्से को प्रदर्शन करते हैं. किसी किसी का गुस्सा नाना पाटेकर गुस्सा है. नाना पाटेकर जानते हैं, हिंदी फिल्मों के एक एक्टर, बहुत जबरदस्त चिल्लाते हैं. कुछ भी बात करते हैं तो चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं. कुछ लोगों का गुस्सा ऐसा स्टाइल का गुस्सा है, गुस्सा आएगा मतलब और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देंगे. कुछ लोगों का गुस्सा मीना कुमारी गुस्सा है. मीना कुमारी जानते हैं, वो गुस्सा है मतलब हर बात पे रोना आ जाएगा, रोते रोते. सी जो लोग रोते हैं मतलब वो लोग बहुत सहन करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. वो उनका तरीका है गुस्सा एक्सप्लेन करने का. कुछ रो के करते हैं, कुछ चिल्ला के करते हैं. कुछ का गुस्सा बहुत ज्यादा बातें करने शुरू कर देते हैं गुस्सा होने से. इसने ऐसा कि उसने से ऐसा तो नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं, कंटिन्यूस बोलेंगे. आप बोलोगे बाबा बंद करो, बस हो गया, काफी है. कुछ लोग बिल्कुल चुप हो जाएंगे गुस्सा मतलब, बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलेंगे, बस एकदम मुंह के अंदर में, लेकिन अंदर में इतना कुछ भरा हुआ है, वो एक्चुअली अंदर से सफर कर रहे हैं. कुछ लोग गुस्सा में बहुत ज्यादा खाने लगते हैं, खाते जाते खाते जाते खाते, गुस्सा आने से खाते रहते हैं. कुछ लोग गुस्सा आएंगे तो खाना बंद कर देंगे, बिल्कुल नहीं खाएंगे. दो दिन हो गया मैं खाया नहीं, मेरे को इतना गुस्सा आया, बस मैं खाऊंगी नहीं. अलग अलग टाइप के गुस्से हैं, अलग अलग टाइप के गुस्से हैं. इसी मेन, हम जब गुस्सा करते हैं हम सिर्फ उसका एक्सटर्नल रूप देखते हैं, बट एक्चुअली अंडरलाइंग उसके बहुत सारे कारण होते हैं. हम लोग को उस गुस्सा इसीलिए आता है क्योंकि हम जब गुस्सा करने वाले पर्सन को देखते हैं, निमित्त को देखते हैं, तो हम सिर्फ उसको फोकस करते हैं. हमें समझ में नहीं आता है कि उसका और एक ब्रॉडर विजन है. जैसे कभी भी हमारे जीवन में कुछ होता है तो उसके तीन कॉज होते हैं. एक तो होता है कि इमीडिएट कॉज, इस पर्सन के वजह से आया. एक तो होता है कि कार्मिक कॉज, जैसे पूर्व में आपने कुछ कर्म किया होगा. और एक होता है अल्टीमेट कॉज, माने कृष्ण का सैंक्शन, भगवान की इच्छा. लेकिन हम इसीलिए गुस्सा आ जाते हैं क्योंकि ना हम अल्टीमेट कॉज देखते हैं, ना हम कार्मिक कॉज देते हैं, हम सिर्फ इमीडिएट कॉज देखते हैं, इसके वजह से मुझे गुस्सा आया है. लेकिन जब हम ब्रॉडर विजन से देखेंगे तो हमको गुस्सा नहीं आएगा. जब हम सोचेंगे कि हम आत्मा है, कि मेरे पूर्व के कर्म के अनुसार है, अगर ये मेरे साथ हुआ है तो इसमें भगवान की सैंक्शन है, अगर हमारा विजन हम बढ़ा दे तो फिर हमें गुस्सा नहीं आएगा. अब कोई बोलेगा माता जी मैं क्यों अपना विजन बढ़ाऊं, मुझे क्या जरूरत है, मैं तो सिर्फ इमीडिएट कॉज पे ही फोकस करूंगी. लेकिन अगर गोलोक वृंदावन तुमको जाना है तो फिर इस चीज पे तुम्हें ही वर्क करना है, सामने वाले को कोई इंटरेस्ट नहीं है गोलोक वृंदावन जाने के लिए, जाना तुमको है, अगर तुमको जाना है तो तुम्हें इस चीजों पे काम करना पड़ेगा, तुम्हें इस पे वर्कआउट करना पड़ेगा। हमारी भक्ति जीवन का सार ये है कि हम भगवान के फेवरेट बनना चाहते हैं, सबको यही है ना, हम सब भगवान के फेवरेट बनना चाहते हैं, और भगवान तो भगवद गीता में बता चुके हैं कि उनका फेवरेट कौन है। भगवान 12.18 भक्ति योग में बताते हैं, समर शत्रु च मित्रे च, जो शत्रु के साथ मित्र के साथ समान भाव से रह सकता है वो मेरा प्रिय है। भगवान बता रहे हैं जो सुख में दुख में, समर हो विंटर हो, शत्रु हो दोस्त हो, सबके साथ जो समान भाव से रहता है वो मेरा प्रिय है, भगवान बता रहे हैं, और हम भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 6th chapter 9th श्लोका में भी यही बात बताते हैं भगवान कि जो भक्ति में एडवांस्ड है वो लोग हर स्थिति में समान भाव से रहते हैं। अगर हम भगवान से प्यार करते हैं, सी आप जब किसी को प्यार करते हो तो वो जो गुण आप में देखना चाहते हैं आप वो गुण अपने आप में डेवलप करना चाहते हो। हम भगवान को प्यार करते हैं और भगवान ने बता दिया कि मुझे तो ऐसे लोग प्रिय है, बस हमें ऐसे बनना है, हर सिचुएशन में अपने आप को हमें सम रखना है। गुस्सा जब आता है तब हम देखने में भी बहुत भयानक बन जाते हैं। जब एंशियंट ग्रीक पीपल जो राजमहल में वगैरह काम करते थे, जो राजा के सर्वेंट्स, उनका एक सिस्टम था, वो जहाँ भी जो भी उनका यूनिफॉर्म होता था उसके साथ में वो आईना रखते थे, तो सपोज अगर राजा उनको कभी बुलाए कुछ काम पे तो पहले वो अपना आईना से अपना मुंह देखेंगे कि वेदर दे आर प्रेजेंटेबल और नॉट, क्योंकि जब आप गुस्सा करते हो सिर्फ काम करते समय तो गुस्सा, किसी को साथ कुछ आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, तो आपका फेस भी बहुत भयानक हो जाता है, तो दे यूज टू चेक देमसेल्फ कि आर वी प्रेजेंटेबल, आर वी ओके प्लेजेंट, तब जाके राजा के समक्ष वो आते थे। गुस्सा इतनी सारी चीज कर देता है हमारे साथ। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर गुस्सा आया मैंने गुस्सा कर लिया, अब गुस्से की बात खत्म करो, चलो सेवा कंटिन्यू करो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये जो आपने गुस्सा किया है वो सारे सेवा में भी रिफ्लेक्ट होता है, उसका पॉइजन हर जगह कैरी फॉरवर्ड होता है। गुस्से से आपके शरीर में भी बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं। बहुत सालों पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कैसे एक लेडी अपने पति के साथ में कुछ बात पे गुस्सा हो गया, दोनों का फाइटिंग हो गया, उसके बाद में बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क पिला रही थी, बच्चा मर गया क्योंकि उसको इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि उसका जो ब्रेस्ट मिल्क था वो पॉइजनस हो गया आउट ऑफ सो मच एंगर। तो कितनी सारी चीज कर देती है गुस्सा हमारे साथ, सी? तो उसके उस गुस्से को मन में लेके फिर हम चैंटिंग करें, स्तुति करें, कोई लाभ नहीं है। पहले हम उस गुस्से पे हमें वर्क करना है, गुस्से को चेंज करना है या कन्वर्ट करना है। जैसे कभी कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि माता जी इस पर्सन के ऊपर मेरा गुस्सा नहीं है लेकिन मुझे इस पर्सन के ऊपर प्यार भी नहीं है, इट्स जस्ट दैट मैं न्यूट्रल हूँ और मैं इस पर्सन के साथ डील नहीं करना चाहती हूँ। ये बहुत बड़ा चीटिंग है। या तो आपके उसके ऊपर गुस्सा है या तो आपको उसके ऊपर प्यार है, ना गुस्सा ना प्यार हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आपने एक बार कोई एनर्जी क्रिएट की है तो वो एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, एनर्जी को सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो सपोज अगर मैंने इस पर्सन पे गुस्सा कर दिया तो मैंने एक एनर्जी क्रिएट कर दी, अब मैं बोलूंगी नहीं नहीं मुझे इस पर्सन के साथ ना गुस्सा है ना प्यार है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, उसका मतलब गुस्सा अभी भी है। आइदर ये एनर्जी को कन्वर्ट करना है मुझे गुस्से को प्यार में, या तो प्यार गुस्सा में कन्वर्ट होता है या तो गुस्सा प्यार में कन्वर्ट होता है, लेकिन नहीं ये इसका डिस्ट्रक्शन नहीं होता। साइंस भी बोलता है ना जो एनर्जी क्रिएट होती है वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसको सिर्फ आप चेंज कर सकते हो। उसका मतलब अगर एक बार आपको किसी के लिए नेगेटिव भाव आए हैं उसका मतलब आपको क्या करना है, नाउ यू हैव टू वर्क एंड मेक इट इनटू पॉजिटिव भाव। कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस आई डोंट वांट टू डील विद दैट पर्सन, मैं उस पर्सन के साथ डील नहीं करना चाहती हूँ। अगर उस पर्सन को मेरी कभी कुछ जरूरत पड़ी तो मैं मदद करने के लिए तैयार हूं लेकिन मैं उसके साथ डील नहीं करना चाहता, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर आप किसी पर्सन के साथ कोई रिलेशन ना रखो और फिर उस पर्सन को कभी आपकी जरूरत पड़ी तो वो आपके पास क्यों आएगा? आप कोई एम्बुलेंस तो नहीं हो, आप फायर ब्रिगेड भी नहीं हो कि आपके पास आएगा। उसका मतलब अभी भी आपको उसके लिए हेट है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज जस्ट लाइक ऑर्गेनिक फार्मर्स क्या करते हैं, गार्बेज जो होता है वेस्ट होता है उसको मैन्यूर बना देते हैं, फर्टिलाइजर्स बना देते हैं, उसी तरह से हमारे नेगेटिव भाव को भी हमें पॉजिटिव भाव में क्रिएट करना है. एक्चुअली प्रॉब्लम हमें सिर्फ एक दो लोगों के साथ ही होता है, पूरी दुनिया के साथ प्रॉब्लम किसी को नहीं होता है. कभी कभी मुझे कुछ लोग बोलते हैं, माता जी मेरा नेचर तो बहुत अच्छा है, मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है, इस दुनिया में मुझे सिर्फ एक पर्सन से प्रॉब्लम है. वो एक पर्सन के सिवाय मुझे, आप किसी को भी पूछ लो, मेरा किसी के साथ भी रिश्ता खराब नहीं है, मेरा सिर्फ वो एक पर्सन के साथ रिश्ता खराब है. अरे भाई साहब, सबका एक दो पर्सन के साथ ही रिश्ता खराब होता है, पूरी दुनिया के साथ किसी का रिश्ता खराब नहीं होता. लेकिन क्या वो एक दो पर्सन के साथ रिश्ता खराब करना इतना इम्पोर्टेंट है कि आप भगवान के फेवरेट लिस्ट से निकल जाओ? इफ इज इट दैट इम्पोर्टेंट फॉर यू, वो आप डिसाइड करो आप क्या करना चाहते हो. अगर आप भगवान का फेवरेट बनना चाहते हो तो वो एक दो पर्सन के साथ जो आपका है उसको मिटा दो, वहां का वहां उसे डिसॉल्व कर दो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. चाइना में एक स्कूल में एक टीचर ने बहुत अच्छा होमवर्क दिया था बच्चों को, बोला कि आप उठो देखो क्लासरूम में आपको कितने बच्चों के साथ प्रॉब्लम है या आपको पसंद नहीं है या यू आर नॉट फ्रेंड्स विथ. तो सब बच्चों ने काउंटिंग कर लिया कि किसी को एक बच्चे के साथ, किसी को दो, किसी को सात, किसी को आठ. फिर बोला जितने बच्चों के साथ में आपको प्रॉब्लम है उतने पटैटोज, बॉईल किए हुए पटैटोज आप कल लेके आ जाना एक प्लास्टिक की बैग में. तो बच्चे लेके आ गए, कोई सात लेके आया, कोई छह लेके आया. अब टीचर ने बोला एक्सरसाइज ये है कि इस पटैटो के बैग को आप 24 आवर्स आप अपने साथ रखना है, यू कैन नॉट लीव इट एनीवेयर. तो अब बच्चे ने बोला ठीक है, तो नाउ दे आर कैरिंग इट, बाथरूम जाओ तो साथ में, घर जाओ तो साथ में, होमवर्क करो, जहां भी है वो बैग को अपने साथ में लेके लेके घूम रहे. एक दिन तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगा, दूसरा दिन प्रॉब्लम नहीं लगा, तीसरा दिन से इरिटेशन होने लगा, फोर्थ डे से स्मेल आने लगा, सड़ने लगा, फिफ्थ डे से तो इतना हैवी लगने लगा. सेवेंथ डे पे बच्चे बोले टीचर और कितना दिन इसको कैरी करे, अब नहीं होता, एक तो स्मेल आ रही है सड़ी हुई, इसको आप काइंडली कुछ सोल्यूशन करिए. तो टीचर ने बोला जस्ट लाइक दैट, आप जो नेगेटिव भाव दूसरों के लिए कैरी करते हो इट बिकम्स ए बर्डन ऑन यू आफ्टर सम टाइम. क्लीन इट अप, उसको निकाल दो. हम सोचते कि नहीं, अगर उस थिंकिंग को अगर मैंने मेरे मन में रख दिया तो क्या हो गया, क्या हो गया, वो सड़ जाएगा, फिर वो स्मेल आएगा. आप सोचते हो भक्ति में भाव क्यों नहीं आता, चैंटिंग में भाव क्यों नहीं आता, कैसे आएगा? सड़े हुए आलू की बैग जो आप लेके घूम रहे हो ना सब जगह, तो फिर कैसे भाव आएगा चैंटिंग में? कैसे? जो भी नेगेटिव भाव किसी के लिए होते हैं उसको निकाल के बाहर फेंक देने चाहिए. फिर क्या होगा? यू विल फील सो लाइट, लगेगा ना लाइट लगेगा. तो कभी भी किसी के साथ भी कुछ खटपट हो, जो हो, साथ ही साथ उसे सॉर्ट आउट कर देनी चाहिए. डिवोटी कम्युनिटी में हम डिवोटीज है ही कितने कम एक्चुअली. हाँ, ये जू के सामने होर्डिंग लगा देते हैं, टाइगर एंडेंजर्ड है, ये एंडेंजर्ड है. मैं तो बोलती हूँ डिवोटीज एंडेंजर्ड स्पीशीज है. कहाँ है डिवोटीज? करोड़ों लोगों के पॉपुलेशन में शायद 1% भी नहीं हो गए जो भक्त है, और उसमें भी सही संप्रदाय में भक्त है और सही मायने में, सही ऑर्गेनाइजेशन में, सही मार्ग में कितने लोग हैं, उसका मतलब हम लोग कितने कम हैं. और हम डिवोटी कम्युनिटी में ही खटपट होगा और एक दूसरे का साथ नहीं लेने चाहेंगे तो कैसे भक्ति जीवन में हम आगे बढ़ेंगे? तो इमीडिएटली अगर ऐसी कुछ खटपट होती है तो हमें क्या करना है, उसको इमीडिएटली सॉर्ट आउट कर लेनी चाहिए. किसी के ऊपर में भी द्वेष की भावना को डेवलप नहीं करनी चाहिए. अब हम आते हैं कि गुस्सा आता कहाँ से है, इसकी कोई मूल कारण तो होगी ना. जिस तरह से अगर किसी को शरीर में कोई बॉयल हो जाता है, कोई एकन या पिंपल आता है, उसके पीछे कोई कारण होता है. आपको डॉक्टर ब्लड रिपोर्ट निकालने के लिए बोलते हैं, शायद आपके ब्लड में कोई प्रॉब्लम होगा. ऊपर ऊपर से सोफ्रामाइसिन या आइस लगाने से ठीक नहीं होता है. उसी तरह से अगर हम गुस्सा आता है तो गुस्से के पीछे भी कुछ कारण होते हैं, अंडरलाइंग फैक्टर्स होते हैं, हमें उस पर वर्क करना चाहिए. हमें गुस्सा क्यों आता है उसके भी कुछ कारण है. एक कारण ये है नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ सिचुएशन. गुस्सा इसीलिए आता है बिकॉज वी आर अनेबल टू एक्सेप्ट द सिचुएशन. जो सच्चाई है, रियलिटी है हमारे जीवन की, हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए हमें गुस्सा आ जाता है. एक बार एक मुस्लिम लेडी थी, एक साइकेट्रिस्ट के पास गई. साइकेट्रिस्ट के पास लोग क्यों जाते हैं? थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे तो थोड़ा सा मेंटली लाइट फील होगा. अब ये लेडी एक बच्चे को लेके गई, उसके छोटे बेटे को लेके गई. अब जैसे ही साइकेट्रिस्ट के ऑफिस में गई, ये बच्चा बहुत शैतान, फ्लावर वॉज गिरा दे रहा है, चेयर को उलट कर दे रहा है, विंडो ये कर दिया, कुछ नीचे फेंक दिया, इतना शैतानी कर रहा है. साइकेट्रिस्ट समझ गया, ओ इसी के लिए आई होगी बेचारी, इतना बच्चा इतना हाइपर एक्टिव है शायद. तो इमीडिएटली साइकेट्रिस्ट उसको समझाने लगा, नहीं मैडम ऐसा आप चिंता मत करिए, कुछ बच्चे हाइपर एक्टिव. उसने बोला नहीं 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 नहीं, मैं इसके लिए नहीं आई हूँ, एक्चुअली मेरा जो पहला बेटा है वो कैंसर से मर गया. तो फिर इमीडिएटली साइकेट्रिस्ट बोलने लगा, अच्छा अच्छा देखिए मैडम ऐसा है ना, वी के नॉट हैव परमानेंसी इन लाइफ. कभी कभी नहीं नहीं नहीं, मैं उसके लिए भी नहीं आई हूँ काउंसिलिंग के लिए, मेरे बड़ा बेटा कैंसर में मर गया, ये सेकेंड वाला है, ये थोड़ा सा हाइपर एक्टिव है, मेरा प्रॉब्लम तो मेरा तीसरा बेटा है. तो साइकेट्रिस्ट ने पूछा, आपका प्रॉब्लम क्या है तीसरा बेटे का? मतलब प्रॉब्लम ये है कि बड़ा बेटा कैंसर में मर गया, ये दूसरा वाला थोड़ा सा हाइपर एक्टिव जैसा, मतलब लिटिल बिट मेंटली ये है, तीसरे बेटे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेल्दी फिट एंड फाइन है, एजुकेशन में भी अच्छा है, क्लास में भी फर्स्ट आता है, ओबीडियंट भी है, स्वभाव शांत भी है. मेरी चिंता ये है अगर वो भी कभी बिगड़ गया तो, अगर उसकी भी कभी हेल्थ खराब हो गई तो, बस ये मेरा टेंशन है, इसके लिए आप मुझे काउंसिलिंग करिए. अब इमेजिन, वो तो प्रॉब्लम है ही नहीं, जो प्रॉब्लम नहीं है उसको उसकी टेंशन है, जो प्रॉब्लम है उसकी नहीं. समटाइम इट्स जस्ट दैट नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ सिचुएशन, हम सिचुएशन को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इसलिए हमें गुस्सा आ जाता है. कभी कभी गुस्सा का कारण या मिसअंडरस्टैंडिंग का कारण ये भी हो सकता है नॉन कम्युनिकेशन. एक दूसरे के बीच में अगर कम्युनिकेशन सही नहीं हो तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, उससे भी गुस्सा का. कभी कभी आप शायद एक दूसरे को समझ ही नहीं पाए, इसलिए भी आपको गुस्सा. सी, एक हस्बैंड एंड वाइफ थे, 25 इयर्स मैरिड. अब वाइफ का नेचर बहुत अच्छा, हस्बैंड थोड़ा सा गुस्सा वाला. अब वाइफ हर चीज सैक्रिफाइस कर देती थी. अब ये लोग जो है रोज मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में केक खाते थे. अब वाइफ बहुत अच्छा बेक कर लेती थी. अब आप कितने भी अच्छा बेक करो, केक के ऊपर का पोर्शन थोड़ा सॉफ्ट होता है, नीचे का पोर्शन थोड़ा सा हार्ड होता है. अब नीचे का पोर्शन थोड़ा सा हार्ड होता था तो वाइफ सोचती थी कि हस्बैंड को क्यों दूं हार्ड वाला पोर्शन, वो हमेशा सैक्रिफाइस कर देती थी, ऊपर का सॉफ्ट पोर्शन जो है हस्बैंड को देती थी और वो हमेशा नीचे का हार्ड पोर्शन लेती थी. ऐसे 25 साल से वो सैक्रिफाइस कर रही थी. एक दिन उसका दिल आया कि अरे मैं इतने साल से सैक्रिफाइस कर रही हूँ, कभी मुझे भी सॉफ्ट वाला पोर्शन खाना है. तो इस दिन उसने क्या किया, ब्रेकफास्ट में हार्ड वाला पोर्शन हस्बैंड को दे दिया, सॉफ्ट वाला पोर्शन उसने ले लिया. अब जैसे ही हस्बैंड ने वो केक टच किया हार्ड वाला, तो वो इमीडिएटली बोला कि अरे बाप रे, 25 साल से मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, मुझे हार्ड पोर्शन बहुत पसंद है, लेकिन हमेशा तुम हार्ड पोर्शन लेती थी, मुझे सॉफ्ट वाला देती थी, 25 साल के बाद टुडे यू हैव फाइनली गिवन मी व्हाट आई वांटेड. अब बीवी सोच रही है 25 साल से मैं सैक्रिफाइस कर रही हूँ, हस्बैंड सोच रहे 25 साल से वो सैक्रिफाइस कर रही है. अब प्रॉब्लम क्या था, सिर्फ कम्युनिकेशन. अगर वो पूछ लेती कि तुमको हार्ड वाला पोर्शन चाहिए या तुम्हें सॉफ्ट वाला केक चाहिए, तो सॉर्ट आउट हो जाता था. आधा से ज्यादा प्रॉब्लम हमारे होते हैं क्योंकि हम कम्युनिकेट ही नहीं करते कि हमको क्या चाहिए. दो बच्चे झगड़ रहे थे एक ऑरेंज के लिए, दो बच्चे झगड़ रहे थे एक ऑरेंज के लिए. अब उसका सोल्यूशन क्या होगा, आप मुझे बताइए क्या सोल्यूशन है. इज इट What you feel? Is it justified? अगर आधा आधा दे सोल्यूशन ठीक है. How many of you feel that ये सही decision है, आधा आधा देना. ऐसे ही किया हमने भी, आधा आधा दे दिया. अब क्या हुआ, जब आधा आधा दे दिया तो एक बच्चे ने क्या किया, अंदर का जो ऑरेंज था वो खा लिया और स्किन बाहर फेंक दिया. दूसरे बच्चे ने क्या किया, अंदर का ऑरेंज फेंक दिया और बाहर का स्किन रख लिया. बोला तुमने ऐसा क्यों किया, बोला अरे मुझे तो ऑरेंज खाना ही नहीं था, मुझे सिर्फ स्किन चाहिए था, मैं तो कोई फेस लोशन बनाना चाह रहा था. और एक लड़का बोला मुझे क्या करना है स्किन का, मैं तो अंदर का ऑरेंज खाना चाह रहा था. अब प्रॉब्लम क्या हुआ, कम्युनिकेशन. अगर कम्युनिकेशन कर दिया होता तो इसको पूरा ऑरेंज मिल जाता, इसको पूरा स्किन मिल जाता था. दैट मीन्स एवरीवेयर वी आर लैकिंग इज बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन, बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन. एक पहले एक ये आती थी मैगजीन, वो क्या है, चंदा मामा ना कोई, एक बहुत सुंदर एक ये आती थी, उसमें बहुत सारी स्टोरीज आती थी. जब हम छोटे थे हम उसको पढ़ते थे. उसमें एक बहुत अच्छी कहानी मुझे अभी भी याद है, बचपन में मैंने सुनी थी, कैसे ना एक घर में चार बेटी और एक बेटा होता है उनको, तो अब बेटा एक ही है तो बहुत ज्यादा लाड़ प्यार कर रहे हैं माँ बाप, हर चीज उसके लिए खरीद रहे हैं, बेटी लोग के लिए नहीं खरीद रहे। अब जब बेटा नया नया कॉलेज में जाता है तो उसके लिए नया जीन्स पैंट खरीद के लाती है माँ, अब बेटी लोग बहुत नाराज, उसके लिए इतना महंगा वाला पैंट खरीदा, तो वो लोग फाइटिंग करती है मदर के साथ। अब जब इसको ट्राई करके देखते हैं तो पैंट बहुत ज्यादा लूज है, तो अब माँ जो है बोलती है कि चलो कोई नहीं मैं इसको ठीक कर दूंगी, फोल्ड करके रख देती है। और बेटी लोग थोड़ी सी नाराज नाराज सो जाती है कि अरे इसके लिए इतना कुछ खरीदा। तो रात को झगड़ा करते करते पूरा फैमिली मेंबर सब लोग सो जाते हैं, कल बहुत स्पेशल डे है, उसको कॉलेज जाना है। अब मिडिल ऑफ द नाइट है ना, बड़ी बेटी उठ जाती है, अरे मेरे को उस मोमेंट पे गुस्सा आ गया, लेकिन जो भी है मेरा भाई है, अब उसको जब ये लूज हो रहा था चलो मैं इसको ठीक कर देती हूँ, तो वो क्या कर देती है, पैंट को थोड़ा सा काट के क्या है उसको स्टिच कर देती है। अब थोड़ा एक घंटे के बाद में सेकंड सिस्टर उठती है, बोलती है अरे फाइटिंग हो गया, जो भी है मेरा भाई है, चलो मैं ठीक कर देती, वो थोड़ा सा काटती है फोल्ड कर देती है। अब तीसरी वाली ने भी ऐसे किया, चौथी वाली ने भी ऐसे किया, और उन दिनों में जैसे वो फानस होता है ना, जैसे वो केरोसिन लाइट वगैरह, तो उतना क्लियर। अब दूसरे दिन सुबह जब उसको कॉलेज जाना था तब पैंट था ही नहीं, बरमोड़ा बन गया था वो। क्या हो गया, नॉन कम्युनिकेशन। आधा से ज्यादा प्रॉब्लम जीवन में आते हैं बिकॉज ऑफ नॉट कम्युनिकेटिंग, नॉट एक्सेप्टिंग सिचुएशन, नॉट कम्युनिकेटिंग प्रॉपरली। एंड द अदर प्रॉब्लम हमें गुस्सा आता है इज बिकॉज ऑफ अवर ईगो, है ना। आई थिंक 90% ऑफ द कॉज गुस्सा आता है ईगो, कि मुझे ये चीज ऐसी चाहिए, उसको ऐसी ही होनी चाहिए, अगर वो वैसी नहीं होती है तो हमें गुस्सा आ जाता है। ईगो भी दो टाइप के हैं, एक है कि वेर यू हैव ए प्राइड, सी प्राइड इज डिफरेंट, जहाँ पे यू थिंक स्पेशल अबाउट योरसेल्फ, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ, और मेरे विशेज के सामने मेरे लव्ड वन की जो विशेज है फैमिली मेंबर्स की, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरी विश फुलफिल होनी चाहिए। और दूसरा टाइप ऑफ ईगो ऐसा है कि यू आर वेरी रिजिड अबाउट योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, वो भी एक ईगो है। जैसे कभी कभी आप आर्ग्यू कर सकते हो कि नहीं मेरा ऐसा कोई ईगो नहीं है, इट्स जस्ट दैट मुझे जो चीज पसंद है मैं वो करता हूँ, दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ ईगो, जहाँ पे आप बहुत रिजिड हो अपनी लाइक एंड डिसलाइक के बारे में, आप किसी के लिए भी फ्लेक्सिबल होने के लिए तैयार नहीं हो। जैसे कुछ लोग होते हैं दे कांट टेक एडवाइस, किसी को कोई सजेशन नहीं ले सकते, जैसे उनकी एक फीलिंग होती है कि आई नो एवरीथिंग, तो इसके वजह से भी एंगर आ जाता है, राइट, बिकॉज दे जस्ट वॉन्ट थिंग्स एज दे वॉन्ट, उनको ऐसी ही चीज चाहिए, ऐसी ही इसी तरह से ही उसको करनी चाहिए। और इवन अगर वो सामने हम्बल भी दिखाए आपको, लेकिन अंदर में उनकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स बहुत स्ट्रांग होती है, ये ही खाऊंगा, इधर ही बैठूंगा, ऐसे ही करूंगा ये चीज, मैं परफेक्शनिस्ट हूं, वो भी एक टाइप ऑफ ईगो है। ह्यूमिलिटी मतलब हर चीज में फ्लेक्सिबल, कोई भी चीज में कैसे भी अपने आप को एडजस्ट करने के लिए तैयार रहना, राइट। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से हमें गुस्सा आता है। तो नॉन एक्सेप्टेंस एक कारण है, नॉन कम्युनिकेशन एक कारण है, ईगो है, कंडीशनिंग भी एक कारण है जिसकी वजह से हमें गुस्सा आता है। कभी कभी हम कंडीशन हो जाते हैं टू बिहेव इन अ सर्टन वे। सी एक जू में एक यंग बेयर का जन्म हुआ, तो जब छोटा सा बेयर का जन्म हुआ तो दे मेड अ 10x10 केज उस बेयर के लिए, तो 10x10 केज में वो बेयर घूमता था। अब जैसे जैसे वो बेयर बड़ा होता हुआ चला गया, उतना स्पेस उसके लिए इनफ नहीं है, तो दे शिफ्टेड हिम टू अ बिगर केज विच वॉज लाइक 40x40। लेकिन अब इसको 10x10 वॉकिंग करने में इतना कंडीशन हो गया था कि जब 40x40 के केज में उसको डाला फिर भी वो 10x10 ही वॉक करता रहता था, बिकॉज ही वॉज कंडीशन टू ओनली दैट मच स्पेस। कभी कभी हमारी कंडीशनिंग इतनी स्ट्रांग है कि वी आर यूज टू वर्किंग, थिंकिंग, जजिंग इन अ पर्टिकुलर वे, राइट। समटाइम्स एंगर इसीलिए भी होता है बिकॉज ऑफ रॉन्ग अजम्पशंस। समटाइम The other person doesn't mean that at all. कभी कभी आप गलत assumption कर लेते हो, इसलिए आप गुस्सा हो जाते हो, शायद उस person का ऐसा कोई meaning है ही नहीं, लेकिन हम गलत सोचते हैं, हम judgmental हो जाते हैं, हम बहुत जल्दी लोगों को judge करते हैं। अगर आज आपको कोई devotee दिख गया, कोई होटल से बाहर आ रहा हो या कोई पब से, इमिडिएटली आप जजमेंटल हो जाओ, अरे ये तो डिवोटी है यहाँ से क्यों, अरे भाई इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो, शायद वो वहाँ पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गया हो, शायद उसके कोई दोस्त वहाँ पे चला गया जिसको वो लेने के लिए. बट द प्रॉब्लम इज दैट हम हर चीज फेस वैल्यू पे जज करना शुरू कर देते हैं. कोई हमें कैसा दिखे इमिडिएटली हाँ इसका मतलब ये, वी गिव द कंक्लूजन जजमेंट ओवर फिनिश्ड, हमें पता भी नहीं है, वी मेक सो मेनी अजम्पशंस राइट. बट हम तो पूर्ण नहीं है ना, हमारी सेंसेस भी लिमिटेड है, तो हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, हम किस बेसिस पे किसको जज कर रहे हैं, शायद हमें पूरा पिक्चर भी पता नहीं है. तो दीज आर सो मेनी सच रीजंस जिसके वजह से हमें गुस्सा आता है राइट. अब हम क्या करना है, इस रीजंस पे हमें वर्क करना है. कभी कभी गुस्सा इसीलिए भी आता है क्योंकि हमारा ओवर एक्सपेक्टेशन होता है राइट. ओवर एक्सपेक्टेशन होता है, रॉन्ग एक्सपेक्टेशन होता है, रादर रॉन्ग एक्सपेक्टेशन होता है. सी अगर आप कोई मैंगो के झाड़ के नीचे खड़े रहो और आप सोचो कि लेमन आएगा तो लेमन नहीं आएगा, मैंगो से मैंगो ही आएगा. समटाइम्स यू हैव ओवर एक्सपेक्टेशंस और रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर पार्टनर, ये भी हो सकती है ना. समटाइम्स यू एक्सपेक्ट कि आपके हस्बैंड इसी तरह से बिहेव करने चाहिए और समटाइम्स यू एक्सपेक्ट कि योर वाइफ शुड बिहेव इन दिस वे, इट मे नॉट बी पॉसिबल. सबका अपना अपना नेचर है, सबका अलग अलग है. बहुत सारे हस्बैंड लोग का कंप्लेन होता है, अरे मेरी बीवी को पता है मुझे भिंडी की सब्जी पसंद नहीं है, फिर भी बना दी भिंडी की सब्जी, 30 साल हो गए शादी करके, फिर भी शी मस्ट अंडरस्टैंड, अरे आज उसका दिल किया खाने के लिए भिंडी. सी द काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस एंड यू नो यू कीप ऑन पीपल कि नहीं ये ऐसा ही होना चाहिए, इसको ऐसे ही बिहेव करना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता है. एंड स्पेशली विद दिस इंटरनेट एज एंड बॉलीवुड एज, एवरीबडी एक्सपेक्ट से मेरा हस्बैंड हीरो के जैसे शाहरुख खान के जैसे रोज लेके आएगा, तो पॉसिबल नहीं है. रियल लाइफ में कोई रोज नहीं लेके आता है, इट्स नॉट पॉसिबल. यू हैव टू हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन. ही कैन नॉट सिंग ए सॉन्ग फॉर यू और गेट ए रोज फॉर यू और कंपोज ए पोएट्री. बट हमारी एक्सपेक्टेशन ही गलत है बिकॉज वी आर इंस्पायर्ड बाई डिफरेंट अदर थिंग्स जो हमें मीडिया दिखाता है और उसे हम गुस्सा आ जाते हैं कि हमें ऐसे क्यों नहीं हो रहा है. सो दीज आर द थिंग्स जिसके वजह से हमको गुस्सा आ सकता है. अब इसका सोल्यूशन क्या है, हमें टाइप्स ऑफ गुस्से पता चल गए हैं, हमें गुस्से के कारण पता चल गए, अभी गुस्से का सोल्यूशन क्या है. सी कभी कभी किसी को मैं ये बात बताने से बोलते हैं कि माता जी आपके साथ कंपेयर मत करिए, प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल ये सब मत बोलिए, वो सब बोलो प्योर डिवोटी है, हमारे लेवल पे आपको पता नहीं उस दिन क्या हुआ था. ये ऐसे उनका शुरू होता है. अगर आप भी होते ना उस सिचुएशन में माता जी, आप पॉसिबल ही नहीं, आपको पक्का गुस्सा, इतना सिचुएशन ऐसा मेरा नहीं, ऐसा नहीं है. हर एक पर्सन का डिग्रीज अलग है, हर एक पर्सन का रिएक्शन अलग होता है. सी एक घर में एक मदर ने इडली चटनी बना दी, उसके 4 बेटे थे. अब इडली चटनी बना दी, डाइनिंग टेबल पे रख दी, अब चटनी में सॉल्ट देना भूल गई. अब बड़ा बेटा का क्या रिएक्शन था, जैसे देखा रे चटनी में सॉल्ट नहीं है, उसने एकदम प्लेट फेंक दी. ये उसका डिग्री ऑफ रिएक्शन है, उसको गुस्सा आ गया. सेकेंड बेटा ने जब देखा कि भाई चटनी में सॉल्ट नहीं है, उसने मम्मी को जाके बोला भैया सॉल्ट नहीं है, नेक्स्ट टाइम से आप केयरफुल रहिए, थोड़ा सा आप याद करके डाल दीजिए. तीसरा बेटा ने सोचा अरे चलो सॉल्ट नहीं, किचन में जाओ सॉल्ट लेके डाल दो, खत्म, उसमें इतना इश्यू बनाने की क्या जरूरत है. चौथा बेटा तो वही क्या है वो गेम आजकल बच्चे खेलते हैं, पबजी. हाँ, चौथा बेटा पबजी खेल रहा था. अब पबजी खेलते खेलते उसको पता ही नहीं चला कि चटनी में सॉल्ट नहीं है, वो खा लिया. अब चारों के डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन है ना, एक ही सिचुएशन है, रिएक्शन कितने अलग अलग है. तो ऐसा हो सकता है, इट्स नॉट दैट एवरी सिचुएशन का यही होना चाहिए, इट्स जस्ट ऑन यू कि आप कैसा रिएक्शन दो. एक हस्बैंड वाइफ नई नई शादी हुई थी, तो हस्बैंड बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था, बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाता था, कुछ भी काम बोलता है बोल देखो ये काम अभी का अभी हो जाना चाहिए, नहीं तो. अब वो नहीं तो के पहले ये काम कर देती थी कि भाई कुछ तो बोल देंगे, डांट देंगे कि मार देंगे क्या. अब रोज उसको धमकी देता है, जल्दी करो नहीं तो ये आज ये बन जाना चाहिए, नहीं तो नहीं तो. अब एक दिन वो किटी पार्टी में गई, अपने फ्रेंड्स को बोली अरे मेरे हस्बैंड तो बहुत टॉर्चर कर देते हैं यार, हर बात में नहीं तो मेरे को बहुत डर लगता है, वो आने से मेरे को शिवरिंग हो जाती है घर में. उसकी एक फ्रेंड थोड़ी स्मार्ट थी, बोला ठीक है इस बार अगर वो ऐसा बोलता है ना नहीं तो, तो तुम पूछ लो कि नहीं तो क्या, पूछ के देखो पता तो चले कि क्या नहीं तो क्या. बोली ठीक है, इस बार वो रेडी हो गई. सुबह सुबह हस्बैंड चिल्लाया, 5 मिनट के अंदर में गर्म पानी रेडी होना चाहिए बाथरूम में, नहीं तो। ये किचन से बाहर निकली और बेलन से, मतलब चपाती बना रही थी, बेलन लेके आई, नहीं तो क्या, बोले नहीं तो मैं ठंडा पानी से नहा लूंगा। ठंडा पानी से नहा लूंगा। नहीं तो धमकी दे रहा था, लेकिन है बेचारा बहुत सॉफ्ट, उसका ऐसा कोई माइंड में था ही नहीं। सो एवरी सिचुएशन में हैव ए डिफरेंट रिएक्शन, जरूरी नहीं कि एवरीबडी रिएक्ट्स ऑन द सेम वे। इवन वॉट एवर अवर सिचुएशन इज, इफ यू हैव ट्रेन्ड योर माइंड प्रॉपरली, इफ यू हैव अ प्रॉपर ट्रेनिंग, यू कैन गिव अ प्रॉपर रिएक्शन टू दैट। अब वॉट आर द सॉल्यूशंस फॉर दिस, ये जब एंगर आता है हमें क्या करना है। सबसे पहले तो माइंडफुल, जो मैं आपको पहले स्टेप बता चुकी हूँ कि बी माइंडफुल, ब्रीथिंग करो, अलर्ट हो जाओ कि हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, ओके मुझे इस पर्सन पे गुस्सा आ रहा है, ट्राई टू बी अलर्ट एंड कॉन्शियस अबाउट इट, वॉच योर थॉट्स, वॉच योर थिंग्स। सेकेंड थिंग यू कैन डू इज रीविजिट द इवेंट, जब आपका गुस्सा ठंडा हो जाए तब आप उस इवेंट को फिर से सोचो कि क्या हुआ था, ऐसा क्यों हुआ, किसका गलती है, उसको एनालाइज करो। दूसरा पॉइंट है कि ट्राई टू हैव ए ब्रॉडर विजन, समझो कि हर चीज का इमीडिएट कॉज होता है, कार्मिक कॉज होता है एंड अल्टीमेट कॉज होता है, और जो भक्त है वो हर चीज में भगवान के हाथ को देखता है, तब इसलिए उसको किसी चीज में गुस्सा नहीं आता। जैसे मैं बहुत बार बताती हूँ कि अगर आप किसी एनिमल, किसी कुत्ते के सामने अगर आप बोन रख दो तो वो कुत्ता क्या करता है, वो बोन को खा के चला जाता है, लेकिन वही अगर आप किसी शेर के सामने खाना रख दो तो वो खाना को नहीं देखता, वो आपके हाथ को देखता है, वो आपको खाएगा क्योंकि कहाँ से खाना आया। उसी तरह से जो भक्त है वो कॉज को नहीं देखता कि इसके वजह से मुझे प्रॉब्लम है, इसके पीछे किसका हाथ है वो उसी को देखता है। हर चीज जो मेरे साथ मेरे जीवन में होती है उसके पीछे अल्टीमेट कॉज भगवान है, और भगवान तो मेरे वेलविशर है, तो मेरे साथ जो भी हो रहा है भगवान की सैंक्शन से हो रहा है। तो आप अपना विजन ब्रॉडर बना दो, फिर आपको गुस्सा नहीं आएगा। दूसरा सॉल्यूशन है कि हमेशा अपने गोल के बारे में कॉन्शियस रहो। आपका मेन गोल है गोलोक वृंदावन जाना। सो बोलते हैं ना कि यू शुड कीप द, आपका जो बिगर चीज आपको जो चाहिए उसको आपको फोकस में रखना है, उसके लिए छोटी छोटी चीज आपको कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। जैसे मैं कभी कभी एग्जाम्पल देती हूँ कि सपोज अगर कोई सूट बूट पहन के कोई लड़का मॉर्निंग 9 बजे कोई जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा है, अब देखो समझो अगर किसी के साथ में वो डैश हो गया जाते जाते, अब इमीडिएटली रिएक्शन क्या होता है जब भी आप किसी के साथ डैश हो जाते हो, जो इंडियन स्टाइल, अरे अंधे हो क्या, क्या है तुमने देखा नहीं क्या, तुम ठीक से नहीं चल सकते। अब ये दोनों का झगड़ा हो गया, आधा घंटा तक एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे, फाइनली झगड़ा सॉर्ट आउट हुआ, बाय द टाइम ये इंटरव्यू के लिए गया ऑलरेडी कोई पर्सन सेलेक्ट हो गया था, इसका पूरा डिस्टर्ब हो गया। अब उसको क्या करना चाहिए था एट दैट मोमेंट, इवन दो उसके साथ में डैश हो गया, ही शुड हैव कॉम्प्रोमाइज एट दैट मोमेंट, पहले जाके अपना जॉब अटेंड करके, इंटरव्यू अटेंड करके आ जाता, राइट? उसका मतलब क्या करना है कि हमारा जो बिगर प्रॉब्लम है शुड बी केप्ट एज द बिगर प्रॉब्लम, यू शुड ट्रीट द बिगर प्रॉब्लम एज द बिगर प्रॉब्लम, जो हमारा बिगर फोकस, हमें क्या अचीव करना है उसके ऊपर में हमें फोकस करना है, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में हमें माइंड नहीं करना है, समटाइम्स वी लूज द बिगर विजन, समझ में आ रहा है? तो हमें अगर उसने गोल रखा होता कि नहीं मेरा इंटरव्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको डांटना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ही वुड हैव बीन सक्सेसफुल। उसी तरह से हमारा विजन होना चाहिए कि फॉर मी गोलोक वृंदावन जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छा डिवोटी बनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टिट फॉर टैट करना इंपॉर्टेंट नहीं है एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, तो देन यू कैन, यू नो, यू विल नॉट गेट एंग्री। अदर थिंग इज दैट लीव स्पेस फॉर अदर पीपल्स मिस्टेक। कभी कभी गुस्सा हमें इसलिए आता है कि लोग हमारी एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतरते। जैसे हमने किसी को कुछ काम बोल दिया, उसने वो, अब जॉब स्पेस में, ऑफिस में गुस्सा किस लिए आता है, उसी के लिए आता है ना, आपने किसी लेबर को, किसी पर्सन को कुछ काम बोल दिया और उसने उस टाइमलाइन में उस काम को खत्म नहीं किया, फिर आपको गुस्सा आ जाता है। बट देयर ऑल्सो यू हैव टू ऑलवेज इंट्रोस्पेक्ट कि गलती आपकी भी तो हो सकती है. मे बी यू हैव नॉट गिवन द वर्क टू द राइट पर्सन. मे बी ही वॉज नॉट केपेबल टू बी गिवन दैट वर्क. आपने शायद गलत आदमी को काम दे दिया. यू अंडरस्टैंड? अगर आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे तो समवेयर और द अदर यू विल अंडरस्टैंड कि इसका एक कारण आप भी है. इट्स नॉट दैट उस पर्सन ने काम नहीं किया तो उसी का गलती है. शायद आपको उसको काम देना ही नहीं चाहिए था. शायद काम देते समय आपने ठीक से समझाया ही नहीं था. शायद वो केपेबल नहीं था, फिर भी आपने उसको वो काम दे दिया. सो मेनी प्रॉब्लम्स, राइट? जैसे आप इंडिया में जब आप ड्राइव करते हो तो ये आप यू नो दोज हू लर्न ड्राइविंग, सबसे पहले उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है. आई डोंट नो, इज इट नॉट ऐसे बोलते हैं ना कि भाई व्हेन यू ड्राइव इन इंडिया बिकॉज द ट्रैफिक सेंस ऑफ पीपल इज सो पुअर यू हैव टू ऑलवेज लीव स्पेस फॉर द अदर पर्सन्स मिस्टेक. तो अगर आप किसी के पीछे भी गाड़ी आप रखते हो तो आपको थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा क्योंकि वो बंदा शायद एक्सपर्ट नहीं है ड्राइविंग में, वो कभी भी सडनली ब्रेक मार सकता है. यू हैव टू ऑलवेज लीव दैट space for the other person's mistake. तो वैसे अपने जीवन में भी आप किसी को काम डेलीगेट करो, किसी के साथ डील करो, ऑलवेज बी मेंटली प्रिपेयर कि देर में ऑलवेज बी सम मिस्टेक. सो वॉट इज द बैकअप, क्या करना है आप, वॉट अदर अरेंजमेंट्स यू हैव टू मेकअप. अदर थिंग इज दैट जैसे कोई अभी मेरे साथ आर्ग्यू कर सकता है कि माता जी आप बोल रहे हैं कि गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, बट वॉट अबाउट इन सर्टन सिचुएशन. जैसे हम ऑफिस में काम करते हैं, हमारे नीचे 20-30 लोग काम करते हैं, अगर हम इतने सॉफ्ट हो जाएंगे तो हमारे एडवांटेज लेंगे. वी विल हैव टू शो सम एंगर. तो उधर कोई गलती नहीं है, इट्स जस्ट दैट डू योर रोल विदाउट एक्चुअली गेटिंग इनसाइड इट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. समटाइम एकदम अंदर घुस जाते हैं और हमें उसका अफेक्ट हो जाता है, राइट? सी गुस्सा करने का भी एक तरीका है. गुस्सा डजंट ऑलवेज हैव टू बी ऑन द टॉप ऑफ योर वॉइस, चिल्लाना जरूरी नहीं है. सी प्रॉब्लम यह है कि हमें सेटिस्फिकेशन मिलता है चिल्लाने से. सी एक बार एक हस्बैंड एंड वाइफ बहुत फाइट कर रहे थे, दोनों का हमेशा फाइटिंग. तो गुरुजी के पास चले गए, बोले हमारा ये रोज का फाइटिंग दोनों का, इसका कोई सोल्यूशन निकालिए. तो गुरुजी ने बोला नहीं नहीं, आप फाइटिंग तो कंटिन्यू रखो, सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस करो उसमें. आप जब फाइटिंग करते हो दोनों को, आप एक दूसरे पे चिल्ला नहीं सकते, आप एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, आप एक दूसरे को गाली दे सकते हो लेकिन लिख के देनी पड़ेगी. सो आप चिट में लिख के उसको दो, वो चिट में लिख के आपको देगी. तो जो भी फाइटिंग करना है लिख के फाइटिंग करो. अब लिख के फाइटिंग करने में तो मजा ही नहीं आता. वो चिल्लाएगी, आप चिल्लाओ, तभी तो मजा आएगा. अब लोग जितना बार भी फाइटिंग होगा वो चिट लेके यू आर स्टूपिड, फिर वो लिखेगा बट यू आर फूलिश, बट यू आर, बोले छोड़ो यार कौन लिखता है, हो गया. फिर बोला स्वामी जी अब तो हमारा झगड़ा बंद ही हो गया, हमको बोरिंग हो गया ये लिख के झगड़ा करना. तो ऐसे कोई रूल्स आपके लाइफ में बना दो. आप गुस्सा करो बट इट डजंट हैव टू बी शाउटिंग. सी मंदिर में भी कभी कभी हो जाता है ना कि आप संडे फीस के प्रसादम के लाइन में खड़े हो, आप इतने सिंसियरली खड़े हो और कुछ लोग आ जाते हैं एकदम मिडिल से आके चले जाएंगे, मिडिल में आके आपके मन में इतना गुस्सा आएगा, अरे 16 राउंड सीनियर डिवोटी, लेकिन एक भी सीनियर डिवोटी के गुण नहीं है, एकदम बीच में आके आपको गुस्सा आ सकता है. तो आप प्यार से जाके बोलिए कि प्रभु जी मुझे गुस्सा आ रहा है, प्रभु जी आप पीछे आ जाइए. आप ऐसे करने से अच्छा नहीं लगता प्रभु जी. आप ऐसे भी तो बोल सकते हो ना, थोड़ा सा प्यार से बोल दो कि पीछे आ जाइए प्रभु जी, ऐसे तो ठीक नहीं ना, हम सब भी तो खड़े हैं, बस हो गया. इंस्टेड ऑफ यू नो चिल्ला के, अरे क्या है आप में तो कोई वैष्णव क्वालिटी नहीं है, इट डजंट हेल्प, इट जस्ट वर्स इन थिंग्स, राइट? सो यू कैन टेल पीपल. एंड स्पेशली जैसे आप बाहर में जहाँ काम करते हो, आपके ऑफिस में आपके कोलीग्स जो भी है, यू कैन ऑलवेज एक्ट टू बी एंग्री just in case you need to, because certain situations you have to deal in a certain way, but it should not touch you. And you should close your role then and there. Problem kya hota hai ki you fight with somebody at your office or you shout on somebody at your office and then you carry it with you. आप उसको कैरी करते हो घर में भी, फिर वो जो आपका कंटिन्यू था इट कंटिन्यूज. सी यू स्टार्ट टॉकिंग विथ योर वाइफ ऑल्सो इन द सेम ट्यून, क्योंकि आप अभी फाइट करके आए हैं. तो अगर ये भी पूछेगी कि भाई चपाती या राइस, ये तो नहीं वो, अरे उसने कुछ भी नहीं किया, वो तो अब ऐसे नॉर्मल पूछ रही है, कुछ भी दे दो, क्यों आप गुस्से पे? आप प्रीवियसली गुस्सा थे, फिर आप उसको कैरी करते हो, फिर आप इसके ऊपर गुस्सा निकालते हो, फिर क्या हो जाता है? सी प्रॉब्लम ये होता है कि जब हमारे बॉस हमको डांटते हैं तो उसको तो पीछे जवाब नहीं दे सकते हम लोग, इसलिए हम लोग को गुस्सा मन में रख के मन में तो इतना गुस्सा आता है कि अरे तुम गधे हो ये हो, लेकिन बोल नहीं सकते तो मन में रखते हैं. फिर घर जाके वो गुस्सा अपने बीवी पे निकाल देते हैं. अब बीवी को भी बहुत गुस्सा आता है लेकिन बोल नहीं सकती है, इसलिए वो सोचता ठीक है मुझ पर गुस्सा किया वो काम वाली पे निकाल देते हैं. काम वाले सोचते मैंने कुछ किया नहीं, मुझ पे क्यों गुस्सा हो जाते, वो अब जाके अपने बच्चों पे निकालेगी। अब ये क्या करते हो आप, सिंपली कैरी करके एक दूसरे को क्या पास कर रहे हो, गुस्सा पास कर रहे हो, गुस्सा पास कर रहे हो। सी बहुत लोग ऐसे बोलते कि नहीं माता जी, हम ना गुस्सा हमारे अंदर में रखते हैं, किसी को हम कुछ अफेक्ट नहीं करने देते। ये पॉसिबल ही नहीं है। अ हैप्पी मैन ओनली कैन गिव हैप्पीनेस टू अदर, अ लविंग पर्सन ओनली कैन गिव लव टू अदर, एन अनहैप्पी पर्सन कैन नॉट मेक अदर्स हैप्पी, अ अनलविंग पर्सन कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट लव टू अदर्स। आपके पास जो है आप उसी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इफ यू आर अनहैप्पी इनसाइड यू कांट मेक अदर्स हैप्पी, इट्स नॉट पॉसिबल। सो इफ यू आर हैविंग एंगर इनसाइड मतलब यू आर सफरिंग, यू आर इन पेन। इफ यू आर इन पेन हाउ विल यू मेक अदर्स हैप्पी, उसका मतलब यू विल हैव टू कम आउट ऑफ दैट पेन, राइट। तो हमें इस पेन से बाहर निकलना है, राइट। सो यू हैव टू डू योर रोल। आप दिखाओ किसी को, जैसे अदर डे मैं बता रही थी कि कभी कभी जैसे कोई बोलता है कि भाई हम गुस्सा नहीं दिखाएंगे तो लोग हमारा एडवांटेज लेंगे, तो मैं नारद मुनि का एग्जाम्पल दे रही थी, कैसे नारद मुनि का वो शिष्य होता है सांप, नारद मुनि अपने शिष्य को बोलते हैं कि भाई तुम लोगों को काटा मत करो। फिर एक साल के बाद जब नारद मुनि उस जगह में आते हैं तो देखते हैं कि इस सांप को सबने इतना बुरी तरह से मारा हुआ है, हर जगह से ब्लड निकल रहा है। और नारद मुनि पूछते हैं कि भाई तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई, तो बोला आपने ही तो बोला था कि किसी को मत काटो। तो फिर नारद मुनि बोलते हैं कि मैंने बोला था किसी को काटो मत, लेकिन तुम डरा तो सकते हो, डराने में कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम डराओगे नहीं तो लोग तुम्हें मारेंगे, तुम डराओ, अपना ऐसे दिखाओ लेकिन मारो मत। तो उसी तरह से एज ए डिवोटी हमें कभी कभी कुछ सिचुएशन में थोड़ा सा दिखाना पड़े, बट दैट शुड बी ऑन द लेवल ऑफ एक्टिंग ओनली, अंदर तक हमें वो नहीं छूना चाहिए। हमारा रोल हमें वहाँ ही ऑफिस में हमें जैसे बिहेव करना है, हमें वहाँ पे उस तरह से बिहेव करके उसको वहीं पे क्लोज करना है। सी जज जो होते हैं वो कोर्ट में क्या करते हैं, उनको आदत होता है ना वो हामर लेके, क्या है वो ऑर्डर 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 करते हैं ना। तो एक जज जब घर जाता है तो फिर डाइनिंग टेबल पे शुरू करता है उसकी बीवी को ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अब घर पे बीवी को ऑर्डर कर सकते हैं क्या, क्या कर सकते हैं, हाँ रिक्वेस्ट, मैंने नहीं बोला, हाँ आई हैव नॉट, आई एम जस्ट आस्किंग, ऑन योर ओन यू सेड रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ऑर्डर नहीं कर सकते। तो यू हैव टू क्लोज योर रोल देयर ओनली, जहां पे आपका जो रोल है आपको वो पालन करना। The other thing that can help you to come out of anger is introspection. अपने thoughts को observe करो, मुझे किस तरह के thoughts आ रहे हैं, और जैसे कोई बुरा thought आपको दिखाई देता है उसको immediately निकाल के बाहर फेंकना है। Sometimes हम चीज़ों को procrastinate करते हैं, अरे ठीक है बाद में सोचेंगे उसके बारे में, अरे मुझे अगर कोई बुरा विचार आ गया तो क्या हुआ, किसी को तो पता नहीं चला कि मुझे वो बुरा विचार आया, मैंने तो किसी को एक्सप्रेस नहीं किया, तो मेरे अंदर में रह गया। इट्स नॉट नॉट ट्रू। अगर आपके पास में वो बुरा विचार है वो स्कैनर में तो आएगा ही, बुरा विचार एक से दो मल्टीप्लाई होगा, दो से तीन मल्टीप्लाई होगा, वो हर चीज को पोल्यूट कर देगा। बुरा विचार लेके यू कांट गो ऑन द अदर साइड, जहां हम जाना चाहते हैं गोलोक वृंदावन। जिस तरह से जैसे कभी कभी ना जब हम एयरपोर्ट के लिए बैग पैक करते हैं तो लगता है कोई एक कोक है, कुछ कूल ड्रिंक है, डाल दो किसको पता चलेगा बैग के अंदर, लेकिन पता तो चलता है क्योंकि बैग स्कैन होता है और स्कैन में पता चल जाता है कि आपने कोक का बॉटल लिया है, आपने मिल्क शेक लिया है, सब कुछ स्कैन होता है। और फिर क्या होता है, सब कुछ वो लोग निकाल के बाहर फेंक देते। उसी तरह से हम भी जब गोलोक वृंदावन जाते हमारा पूरा स्कैनिंग होगा, क्या बुरे विचार है, क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स है, तो वहां तक क्यों रुकेंगे, फिर से हमारा रिजेक्ट होगा, उसके अभी से उस थॉट्स को निकाल के बाहर फेंकना है। इंट्रोस्पेक्शन भक्ति जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत मदद करता है, बिकॉज वेन यू डू इंट्रोस्पेक्शन यू बिकम अलर्ट। सी गुस्सा तभी आता है वेन यू आर नॉट अलर्ट। If you are alert about yourself, आपको गुस्सा नहीं आएगा। See, after listening today's session, आप wait करो, गुस्सा आएगा तो मैं practice करूँगा, वो mindful breathing करूँगा, नहीं आएगा गुस्सा। Because गुस्सा तभी आता है जब आप, it comes unconsciously, जब आप जागरूक नहीं हो तभी गुस्सा आता है। अगर आप continuously आपके thoughts को monitor करो तो गुस्सा नहीं आएगा। Introspection करो, alert रहो, और राइट चीज पे फोकस करो। राइट चीज पे फोकस करना. कभी कभी हम हमारा फोकस ही गलत दिशा में है. सी एक आदमी एक ऑफिस में ज्वाइन हुआ, नया नया, फर्स्ट डे ऑफ द ऑफिस एवरीथिंग इज फाइन. नेक्स्ट डे मॉर्निंग, सेकेंड डे जब वो आया तो लेट से आया, 11:30-12 बजे. तो बॉस ने बोला, अरे तुम कल ज्वाइन हुए, आज तुम लेट आ गए. बोला, नो सर, यस्टरडे आई डिड ओवर टाइम, रात को 12 बजे तक काम कर रहा था. लेकिन मैंने तो तुमको कोई काम दिया ही नहीं, रात को 12 बजे तक ऑफिस में क्या कर रहे थे? बोला, सर आपको पता नहीं, आपके ऑफिस में एक प्रॉब्लम है. बोला, क्या है प्रॉब्लम? बोलते, सर आपका जो ये कीबोर्ड है ना, उसमें अल्फाबेट सब सही से नहीं है. ए के बाद बी, बी के बाद सी आना चाहिए, इसलिए मैंने सारे अल्फाबेट्स निकाल के पूरा रात कीबोर्ड को ठीक कर दिया सर, अभी ए टू जेड एकदम परफेक्ट है. नाउ दिस इज स्टूपिड, योर फोकस इज ऑन द रॉन्ग प्लेस, राइट? एंड एक चीज जब गलत होती है ना, तो उसके साथ में सारी चीजें गलत हो जाती है. सी अगर आप, सी सुबह सुबह आप अगर बटन बंद करते हो आपके शर्ट के, क्या होता है ना, अगर फर्स्ट बटन रॉन्ग हो जाता है ना, आप बेशक सारे बटन लगाओ, सारे बटन रॉन्ग हो जाते है ना. फर्स्ट बटन करेक्ट आने से सब कुछ ठीक हो जाता है. समटाइम्स आपका फोकस अगर गलत जगह पे हो, आपका स्ट्रेंथ, आपका माइंड, आपका एनर्जी एंड टाइम अगर आप गलत जगह पे लगा रहे हो, तो सब कुछ गलत ही होने वाला है. अदर थिंग इज दैट कभी कभी हम चीजों को बहुत ज्यादा ज्यादा खींचते हैं, इलास्टिक के जैसे. जैसे सपोज अगर कोई घटना घट गई, आपको किसी पे गुस्सा आ गया, किसी को आप पे गुस्सा आ गया, दोनों की अनबन हो गई, चिल्ला चिल्ली हो गई, अब आपको क्या करना चाहिए, उस घटना को वहीं पे खत्म करनी चाहिए. लेकिन आप क्या करोगे, उस घटना को खींचोगे खींचोगे खींचोगे, जितने लोग मिलेंगे सबको बताओगे ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, बार 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 उस घटना को दोहराते रहोगे. उसमें भी क्या होता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड पूरा पोल्यूट हो जाता है. तो चीजों को लॉन्ग खींचना नहीं है, उसको शॉर्ट में उधर ही खत्म कर देना है. जस्टिफिकेशंस में टाइम वेस्ट नहीं करना है. समटाइम वी गिव सो मेनी जस्टिफिकेशंस, एक्चुअली मैंने इसीलिए ऐसा किया था, मैंने इसीलिए ऐसा, व्हाई कांट वी सिंपली एक्सेप्ट इट एंड फिनिश इट अप. ये कोई कोर्ट केस तो नहीं है ना, कि तारीख के बाद तारीख, तारीख के बाद तारीख, आप इसको जस्टिफिकेशन दो उसके. जस्ट गो फॉर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट. हाँ, यू जस्ट गो एंड एक्सेप्ट, हाँ मेरे से ये गलती हुआ था, आई एम सॉरी, एंड देन फिनिश इट अप. सो ये चीज एक आप कर सकते हो, जिससे आपका गुस्सा कम हो सकता है. अदर थिंग इज परसेप्शन ऑफ थिंग्स. जैसे sometimes your perception of looking at things is different than the other person's perception. usme aapko misunderstanding ho jati hai. jaise ek mother in law ko always complain tha ki uski daughter in law ghar neat nahi rakh rahi hai. always complain, hamesha apne bete ko bolti thi ki no, your wife is not keeping the house clean. ab uska beta ek din sunday tha, ghar pe tha, usne pura ghar check kiya, bola ghar to pura neat and clean hai, fir bhi mummy bar bar kyun complain karti hai. उसको एक आइडिया आया, जब उसकी माँ बाथरूम में गई नहाने के लिए, देन ही वेंट एंड चेक्ड हर मदर, हिज मदर्स स्पेक्टिकल्स. अब उसने देखा कि स्पेक्टिकल्स में धूल थी, साफ नहीं था, डस्ट था, और इसलिए एवरी टाइम शी यूज्ड टू फील के घर कितना डर्टी है. सो व्हाट ही डिड, इमीडिएटली टुक अ क्लॉथ एंड क्लीन द स्पेक्टिकल्स, एंड द मोमेंट शी केम बैक आफ्टर टेकिंग बाथ एंड शी पुट हर क्लीन स्पेक्टिकल्स, शी इमीडिएटली स्टार्टेड सेइंग, अरे नो, शी हैज स्टार्टेड कीपिंग द हाउस सो क्लीन नाउ, शी हैज चेंज्ड, शी इज इम्प्रूव्ड. सो व्हाट हैज हैपेंड, एक्चुअली समटाइम देयर इज अ प्रॉब्लम इन यू, लेकिन आप दूसरों को प्रॉब्लम समझते हो. सो इट्स लाइक योर परसेप्शन ऑफ लुकिंग एट थिंग्स. सो उसके भी, उस पर भी आपको, यू हैव टू बी लिटिल क्लियर एंड ट्राई टू सी थिंग्स फ्रॉम द अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू. अगर आप इसको भी अपनाओगे, समटाइम्स मे बी यू आर राइट एंड द अदर पर्सन इज ऑल्सो राइट, इज जस्ट दैट हिज, से फॉर एग्जाम्पल लाइक द नंबर 9. सी आप नंबर 9 को अगर नीचे खींचो तो आपको 9 दिखता है, लेकिन सामने वाले पर्सन को वो 6 दिखेगा. एक्चुअली वो पर्सन भी करेक्ट है और आप भी करेक्ट हो. इज जस्ट द वे फ्रॉम कौन से एंगल से वो पर्सन उस चीज को देख रहा है. सो यू कैन वर्क ऑन दैट. द सेकेंड थिंग इज दैट when you get connected to the higher consciousness, when you get connected to Krishna, then the other things gone ho jati hai, choti ho jati hai. For example, agar aap kisi bade building ke samne jaake khade reh jao to building bahut bada lagta hai, lekin jab aap flight pe baithte ho aur jab wo flight aakash pe udta hai to fir wo building aapko bahut छोटा लगता है. When you get connected to higher consciousness, जब आप कृष्ण के साथ जुड़ जाते हो तब बाकी हर चीज बहुत गॉन हो जाती है आपके लाइफ में. आपका विजन बहुत ब्रॉड हो जाता है चीजों को देखने का. सी एक छोटा बच्चा अपना ग्रैंड मदर के पास बैठा हुआ था, तो ग्रैंड मदर एक स्वेटर निटिंग कर रही थी. तो जब वो स्वेटर निटिंग कर रही थी तो सी व्हेन यू सी द स्वेटर निटेड फ्रॉम यू नो, बच्चा छोटा है, ग्रैंड मदर ऊपर है, उसको लग रहा है कि मामा व्हाट आर यू डूइंग, ग्रैंड मदर व्हाट आर यू डूइंग, यू नो दिस इज लुकिंग सो फनी. और फिर ग्रैंड मदर ने क्या किया, एक छोटा सा स्टूल दिया और उसको स्टूल के ऊपर में चढ़ाया. फिर वो जब बच्चा स्टूल के ऊपर में चढ़ के देखा, देन ही कुड सी ओ दिस इज अ स्वेटर. सी व्हेन यू अंडरस्टैंड, जब आप निट करते हो आपको पता नहीं चलेगा वो चीज क्या है, पर जब आप ऊपर से देखते हो तो आपको पूरा डिजाइन दिखाई देता है. समटाइम्स वी सी थिंग्स विद अवर लिमिटेड सेंसेस, विद अवर लिमिटेड परसेप्शन ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, और हमें वो चीजें समझ में नहीं आती है. बट वेन वी गेट कनेक्टेड टू हायर कॉन्शियसनेस, एंड समटाइम्स इन फॉर दैट मैटर इवन वेन वी गेट कनेक्टेड टू अवर गुरु इन दैट मैटर, who may be having a better vision of looking at things, a broader vision of looking at things, then he or she can help us to look at things that way. So, jab kabhi kabhi jaise hamare life mein ya situation mein aisa problem aata hai, we can always take help because they may see it in a different way. They may see things with a bird's eye. You know, jab aap cheeze dekhte ho, aap samne samne dekhte ho. But when a bird sees a things, bird can see the whole thing. You know, jaise aap मास्टर प्लान देखते हो, कोई फ्लैट वैट का ड्राइंग करते हो, तब क्या है कि आपको पूरा मास्टर प्लान दिखाएंगे, यहाँ लिविंग रूम है, यहाँ ये, यहाँ है, बट अपने आप से तो आप सिर्फ दीवार देख पाओगे. समटाइम व्हेन यू गेट कनेक्टेड टू सीनियर डिवोटीज, गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, हायर कॉन्शियसनेस में जो है भगवान से कनेक्ट होते हो, तब आपको वो डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग थिंग्स बता सकते हैं. दैट मे ऑल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग योर एंगर एंड योर इमोशन. एंड last thing, I'll say this and end it here. Clear your accounts in this lifetime. इसके बारे में मैं बहुत बार बता चुकी हूँ. जैसे कभी कभी हमें किसी पे क्रोध आता है या हम किसी से गुस्सा होते हैं क्योंकि हमारा उसके साथ पूर्व का कोई कार्मिक बंधन है. तो जब इस लाइफ में भी हमें उस पे गुस्सा आता है तो हमें उस पर्सन से ज़्यादा प्रेम करना चाहिए. उस पर्टिकुलर पर्सन जिस पे हमें गुस्सा आता है उससे ज़्यादा माफ़ी मांगनी चाहिए. माफ करना नहीं चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए. कभी कभी हम अपने आप के बारे में इतना महान सोचते हैं, जब somebody does wrong to us, जब कोई हमारे साथ गलत बिहेव करता है तो हम उसे माफ़ कर देते हैं. माफ नहीं करना है, माफी मांगनी है. क्योंकि हमने कुछ गलत किया होगा पूर्व में, इसलिए वो पर्सन हमारे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है. इसलिए अब इस लाइफ में हमें उनसे माफी मांगनी है. अब नेक्स्ट लाइफ उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है. मैं बहुत बार ये एग्जांपल दे चुकी हूँ कैसे अगर कोई मीटिंग में आप बैठे हो और आप दोनों का झगड़ा हो गया हो और मीटिंग एब्रप्टली एंड कर दी हो, और फिर नेक्स्ट टाइम जब मीटिंग बैठती है, जब वो पर्सन फिर से आता है, तब आप गुस्सा में ही होते हो क्योंकि आपका प्रीवियस मीटिंग गुस्सा में एंड हुई थी और ये नई मीटिंग भी गुस्से से शुरू होती है और ये ऐसा सिलसिला कंटिन्यू हो जाता है. लेकिन इस पर्टिकुलर मीटिंग में अगर आप दोनों का जो गुस्सा था वो आप एंड कर दो, एक दूसरे से क्षमा मांग लो, हैप्पी हो जाओ, ऑन ए हैप्पी नोट अगर आप मीटिंग एंड करो, तो नेक्स्ट लाइफ में जब ये मीटिंग शुरू होगी यू विल स्टार्ट इट विद अ फ्रेश नोट. लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर रहे, हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं. और आप लोग को तो पता है अकाउंट्स में जब कैरी फॉरवर्ड होता है तब उसके साथ इंटरेस्ट भी जुड़ जाता है. हमें बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करना ही नहीं चाहिए. जिसके साथ हमारा वैर है, प्रॉब्लम है, उससे क्षमा मांगनी चाहिए, उसको और प्यार देना चाहिए, उसके साथ और कैरी फॉरवर्ड नहीं. See, unless and until you really want to see this person's face again and again every life. See, already you are frustrated this life ki is person ke sath problem ho raha hai aur aap usko sort out nahi karna cha rahe ho, you are trying to avoid it. Ab ye continue hota rahega. Uske badle mein jiske sath problem hota hai, go ahead and ask forgiveness, and ask forgiveness. Us person se shama mango. Us person se shama mango. Kabhi kabhi usme bhi hamara ego beech mein aa jata hai, main kyun shama mango, mere to galti hai hi nahi. गलती तुम्हारी नहीं है, पर भगवान के पास तुम जाना चाहते हो. यू वॉन्ट टू गो बैक टू कृष्णा. गलती तुम्हारी है ही नहीं, फिर भी तुम जाके माफी मांग लो. राइट, तुम जाके माफी मांगो. कभी कभी हम दूसरों पे दोष देने के लिए तैयार रहते हैं. कुछ भी हमारे साथ हो, इसकी गलती है, उसकी गलती है. मुल्ला नसरुद्दीन किसी के घर में चोरी कर रहा था, पुलिस ने पकड़ लिया उसको, कोर्ट में हाजिर हुआ, जज ने बोला कि भाई देखो तुम ऐसे चोरी कर रहे थे, तुम पकड़े गए, तुमने गलत किया, फिर तुम क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया? तो बोलता है सर मेरी गलती है ही नहीं, गलती तो आइसक्रीम वाले की है। बोले चोरी तुमने की, इसमें आइसक्रीम वाले की क्या गलती है? पर सर आइसक्रीम वाला पार्क के पास खड़ा था, आइसक्रीम देख के मुझे खाने का दिल किया, मैंने एक नहीं दो नहीं चार आइसक्रीम खाए, आइसक्रीम ज़्यादा खाए इसलिए मुझे सर्दी हो गई, सर्दी हो गई इसलिए जब मैं चोरी करने गया था तो मुझे खांसी आ गई, इसलिए घर वालों को पता चल गया कि मैं चोरी कर रहा हूँ, इसलिए वो लोग मुझे पकड़ लिया। तो गलती तो आइसक्रीम वाले की है ना, मेरी गलती कहाँ है? ये हमारी लाइफ की स्टोरी है, हम इसको उसको इसको उसको, इसकी गलती है उसकी गलती, तुम्हारी है, तुम चोरी करने गए थे, उसमें आइसक्रीम वाले का क्या रोल है? ये हमारा प्रॉब्लम है, हम इतने एक्सपर्ट है दूसरों के ऊपर में ब्लेम देने के लिए, इसकी वजह से हमारा प्रॉब्लम है, उसके वजह से हमारा प्रॉब्लम है। हमें इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कहाँ गलती है, राइट? जैसे जीव गोस्वामी बहुत अच्छे बोलते हैं, ऑल दिस गुड पीपल इन दिस वर्ल्ड आर फोर्स टू बिहेव बैडली विथ यू बिकॉज ऑफ योर प्रीवियस कर्मा। जीव गोस्वामी बोलते हैं इस दुनिया में तो सारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन तुमने इतने बुरे कर्म किए हैं बिकॉज ऑफ विच दिस गुड पीपल आर फोर्स टू बिहेव बैडली विथ यू। तो ये बात भी हमें जब भी गुस्सा आए, किसी पे भी गुस्सा आए, हमें ये बात याद रखनी चाहिए, माई कर्मा माई फॉल्ट, माई कर्मा माई फॉल्ट। और ये अगर ये कुछ सूत्र अगर हमारे जीवन में हम लेके चले तो वी कैन अवॉइड सो मेनी things, we can avoid making offenses to other Vaishnavas, you know, and we can see इस दुनिया में सबसे बड़ा problem है वैष्णव अपराध। अगर आप पाप करते हो तो कृष्ण तो बोलते हैं ना कि मैं सारे पाप से आपको मुक्त कर दूंगा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। एक बार अगर मेरा पास कोई सरेंडर कर दे तो मैं सारे पाप से मुक्त कर सकता हूँ, लेकिन अपराध से मुक्त नहीं कर सकते भगवान। अगर हम किसी वैष्णव के ऊपर में अपराध करें तो उससे तो भगवान भी हमें मुक्ति नहीं देख सकते। दुर्वासा मुनि ने जब अम्बरीश महाराज के खिलाफ अपराध किया तो भगवान ने क्या बोला, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, जाके उससे ही क्षमा मांगो। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम किसी भक्त के तरफ अपराध कर लेते हैं, फिर क्षमा मांगना तो दूर, और दसों लोगों को फोन करके बताते हैं कि इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, और भी अपराध को मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन करना क्या चाहिए, जिस भक्त के साथ हमारा अपराध किया है हुआ है उसके पास जाके उससे क्षमा मांग लेनी चाहिए। मैं आज यहीं पे ख़त्म करूँगी, आने वाले रविवार को कोई और टॉपिक लेंगे। एक 5 मिनट टाइम है, अगर किसी को भी कोई प्रश्न है इस बारे में तो पूछ सकते हैं, उसके बाद ख़त्म करेंगे। यस यस गोलोक वृंदावन, गोलोक वृंदावन में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, गोलोक वृंदावन में सिर्फ आनंद ही आनंद है, देयर इज नो प्रॉब्लम। दैट्स व्हाई यू सी वैकुंठा, इट्स कॉल्ड वैकुंठा, कुंठा मींस प्रॉब्लम्स एंजाइटी, वैकुंठा मींस वेयर देयर इज नो प्रॉब्लम। सो गोलोक वृंदावन का रिफ्लेक्शन ये है, जब रिफ्लेक्शन होता है कोई चीज तो उसका उल्टा दिखाई देता है, आईना में देखो राइट लेफ्ट दिखता है, लेफ्ट राइट दिखता है, वहां पे ओल्ड एज बर्थ डिजीज नहीं है, इसलिए यहाँ पे बर्थ ओल्ड एज डिजीज है, डेथ है, वहां नहीं है, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स है। सो वंस यू गो देयर, नहीं वहां पे जन्म भी नहीं है, वहां पे जन्म भी नहीं है, बिकॉज एक्चुअली जन्म सी यहाँ पे भी हमारा भी तो जन्म नहीं हो रहा है एक्चुअली, बिकॉज हमारा सोल की ना डेथ होती है ना बर्थ होती है, अपेरेंटली दिखता है बर्थ होता हुआ, इट्स जस्ट दैट अपियर हो रहे हैं हम, एंड फिर अगेन इस बॉडी को निकाल के हम डिसअपियर हो जाते हैं, फिर हमें कोई और बॉडी मिल जाती है, लेकिन बर्थ एज सच है ही नहीं, क्योंकि सोल का डेथ है ही नहीं, वी आर ऑल परमानेंट। ओके, ओके लास्ट अनुप का क्वेश्चन लेके खत्म करेंगे, बोलो। साधना हैम्पर होती है तब गुस्सा आता है, ये गुस्सा होना अच्छा है या खराब? इट्स अ वेरी लोडेड क्वेश्चन, बिकॉज साधना खराब होने का कारण आप किसको समझ रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी आप बोलते हो कि साधना मेरी खराब हो रही है क्योंकि बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है, साधना मेरी खराब हो रही है क्योंकि मेरी बीवी मेरे बेटे को अगर ठीक से देखती तो मैं अच्छा से चैंटिंग करता, तो फिर ये गुस्सा अच्छा वाला गुस्सा नहीं है, क्योंकि एक्चुअली साधना नहीं हो रही उसका गुस्सा नहीं है, आपको गुस्सा है कि मैं जिस तरह से चीजें चाहता हूँ वैसे क्यों नहीं हो रही है, घर सब ठीक होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, चैंटिंग के लिए टाइम होना चाहिए, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, तो ये आप किसी और को फोकस कर रहे हो ना। अगर गुस्सा आपको अपने आप पे आ रहा हो कि अरे वाई एम आई सो लेजी, अगर बच्चा उठ जाता है डिस्टर्ब करता, मैं एक घंटा जल्दी उठ जाता तो मेरा चैंटिंग हो जाता, या मैं ऐसा कर लेता तो हो जाता, अगर अपने आप पे गुस्सा आता हो तो वो ठीक है, लेकिन साधना नहीं हो रही है उसका गुस्सा दूसरे पे आता है तो वो ठीक नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं, इट्स ओनली नॉट पास्ट कर्मा, एक तो है आपका प्रेजेंट बिहेवियर, दूसरा है भगवान की इच्छा, तीसरा है काल, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, पूर्व के कर्म है, अभी के कर्म है, भगवान की इच्छा है, काल है, ये सारे फैक्टर्स से एक सिचुएशन क्रिएट होती है, तो आप किसी का फॉल्ट नहीं दे सकते कि मेरे पूर्व कर्म है ओनली एक्सक्लूसिवली, या तो ये इसी नहीं, एवरीथिंग, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स इन्वॉल्वड इन दिस, सो एनीथिंग दैट इज हैपनिंग इन योर लाइफ इज अ मिक्सचर ऑफ सो मेनी थिंग्स। लास्ट क्वेश्चन एंड वी एंड इट हियर। या लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड कि कभी कभी कुछ सिचुएशन में गुस्सा दिखाना पड़ता है, तो आप दिखाइए, गुस्सा करिए मत, मतलब आपको अंदर से गुस्सा नहीं होना है, पर जैसे अभी माँ बाप है, कभी कभी बच्चों को डांट के बोलना पड़ता है ए होमवर्क करो, या टीचर है आपको बोलना पड़ेगा कम ऑन कीप साइलेंस, इट्स नॉट दैट यू आर गेटिंग एंग्री, इट्स जस्ट दैट दैट्स योर ड्यूटी एट दैट मोमेंट, और आपको थोड़ा सा दिखाना पड़ता है, बट इट्स नॉट दैट यू आर एक्चुअली गेटिंग एंग्री और आप एकदम हिल जा रहे हो, राइट? यू अंडरस्टैंड? सी गुरु गुस्सा कर सकते हैं, टीचर माँ बाप ये सब इनको अलाउड है गुस्सा करना, अगर आप ऐसी रेस्पॉन्सिबल पोजिशन में हो, आप किसी के मेंटर हो, आप किसी को ठीक करना चाहते हो, भगवान ये इनका अलाउड है, बट बिना कारण के हमें गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए, वेर यू जस्ट वॉन्ट टू शो योर स्ट्रेंथ या अपनी सुप्रीमिटी बताना चाहते हो बाई शोइंग एंगर इज नॉट द राइट थिंग टू डू। या ठीक है, वी विल एंड इट हियर, थैंक यू सो मच। कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।
सब कृष्णा 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 लगे, सब कृष्णा 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 लगे, सब कृष्ण।